जो है मन की क्रिया को वाणी की क्रिया को भी कर्म मानती है। अठारहवें अध्याय का पंद्रहवां श्लोक ध्यान करो। शरीर शरीर वन मनोभिर मनोभिर्या यत कर्म प्रारब्ध नरः। शरीर वन मनोभिर, शरीर से वाणी से मन से नर जो प्राणी है वो कर्म करता है, तो हर क्षण कर्म करता है और कर्म करेगा तो बंधन है और बंधन है तो भगवान के धाम नहीं जा सकते। तो समाधान क्या है इसका? समाधान ये है कि हम ऐसे कर्म करें कि जिसका फल ना हो। तो भगवान ही इसका उत्तर बता रहे हैं तीसरे अध्याय के नवें श्लोक में। ये हमारे जीवन का केंद्र बिंदु होना चाहिए ये श्लोक। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचरण। यज्ञ अर्थात कर्मणो, यज्ञ रूपी कर्म करना चाहिए। यज्ञ मतलब जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य होता है उसे यज्ञ कहा जाता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? यज्ञ करो, नहीं तो कर्म बंधन हर क्षण होगा ही होगा। तदर्थ कर्म पहुंचते आप मुक्त संगा समाचरा। हर क्षण यज्ञ करने के लिए मिला है हमें ये मानव जीवन। किसलिए मिला है? हर क्षण यज्ञ। आप यज्ञ देखते हो, यज्ञ में क्या करते हो? स्वाहा स्वाहा करते हैं और उठ के अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हैं लोग। ठीक बात है, मनुष्य जीवन मिला ही यज्ञ के लिए है। हर क्षण ये हमें मानव देह मिला है, हमारे हम मानव नहीं है, ये दिया गया है यज्ञ करने के लिए हर क्षण। और जिस क्षण हम यज्ञ नहीं कर रहे उस क्षण हमारे को आगे सोचो, आपको यज्ञ कुंडली के आगे बिठा दिया जाए, सामग्री देके आपको कि हाँ ये यज्ञ करो, और आप यज्ञ ना करके अपने मन चाही चीजें करने लग जाओ, अपने खाना पीना शुरू कर दो, अपने भोग करना, तो क्या परिणाम होगा? दंड मिलेगा कि नहीं? उसी दंड को कर्म कहते हैं। जब व्यक्ति अपने लिए कोई कार्य करता है अपने लिए किसी भी प्रकार से, तो वह यज्ञ नहीं कर रहा, ये तो समझ आ रहा है। तो भगवान कह रहे हैं यज्ञ अर्थात कर्म लो, यज्ञ के लिए ही कर्म करो और किसके कारण करो ही नहीं। ये जो मानव जीवन मिला है इसमें आप ही यज्ञ नहीं करने, मानव जीवन स्वयं यज्ञशाला है। ये यज्ञशाला में हम प्रवेश होंगे नहीं। जैसे कोई व्यक्ति बाहर से आता तो यज्ञशाला में प्रवेश करता है, हमने प्रवेश यज्ञशाला में नहीं होगा, क्योंकि मानव जीवन का मतलब ही यज्ञशाला में प्रवेश हो चुके हो। आप यहां पे आके यज्ञ नहीं करोगे, मानव जीवन मतलब यज्ञ अर्थात कर्म लो, यज्ञ रूपी कर्म करो। यहां पे आके यज्ञ नहीं करना, ये आके यज्ञ मतलब अगले क्या बोलते हैं, अन्यत्र लोकोयम, लोक संबंधित संसार संबंधित कोई भी क्रिया करते हैं, कोई भी क्रिया, कोई भी अच्छी बुरी शुभ अशुभ, वो सारा क्या है? अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनाः। कोई भी अगर क्रिया करते हैं तो हम कर्म बंधन के अलावा और कुछ भी नहीं कर रहे। भगवान ने जो मानव देह हमें दिया है ये उपकरण दिया है हमारे को, इसके द्वारा यज्ञ किया जाना है। और अगर हम यज्ञ ना करके एक क्षण भी कुछ कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाए? कर्म बंधन निरंतर बढ़ता जा रहा है, कम होना नहीं, निरंतर बढ़ता जा रहा है कर्म बंधन। संसारी लोग यज्ञ करते हैं उसके बाद अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हैं, नॉर्मल लाइफ भी यज्ञ है, ये हम समझाना चाह रहे हैं, शायद नहीं समझ आ रहा। नॉर्मल लाइफ भी नहीं, ओनली लाइफ यज्ञ है। ओनली लाइफ भगवान के लिए हर क्षण करने के लिए ही मानव जन्म है, इसके अलावा एक क्षण भी कुछ कर रहे हैं, कुछ भी, हंसे तो बंधन, रोए तो बंधन। मानव जीवन जो है ये हमें सुख दुख भोगने के लिए नहीं मिला, सुख दुख भोग ले नहीं, मानव जीवन हमें मिला है यज्ञ करने के लिए। जब आप यज्ञ कर रहे होते हो तो क्या सुख दुख भोग रहे हो, तो क्या कर रहे होते हो? कुछ भी नहीं कर रहे होते। क्या कर रहे होते हो? भगवान की प्रीत्यर्थम कर्म करते हो। तो भगवान के प्रीत्यर्थम करने के लिए ये मानव जन्म का हर क्षण है। जिस क्षण नहीं कर रहे उस क्षण क्या होगा? कर्म बंधन ही होगा और कुछ भी नहीं होगा। आप ये देखें, हमें ये शरीर मिला है, इंद्रियां मिली हैं, मन मिला है, बुद्धि मिली है, ये हमारी नहीं है। शरीर, इंद्रियां, ध्यान दे प्रत्येक शब्द पे, ये कर्म तत्व के ऊपर वो प्रवचन है जो आज से पहले न आप किसी ने भी ना सुना होगा, ना शायद भविष्य में हो पाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक शब्द। ये हमारी नहीं है। क्या? मन, बुद्धि, इंद्रियां, आंखें, कान, नाक, त्वचा, ये हमारे नहीं है इंद्रियां। मन हमारा नहीं है। क्यों? मैं तो चिन्मय सत्ता मात्र हूं, आत्मा हूं, और ये सब जड़ है। जड़ वस्तु चेतन की नहीं होती है। मैं अब अपरिवर्तनशील हूं, मेरा परिवर्तन नहीं होता। ये सब परिवर्तनशील वस्तुएं हैं। मानव जीवन मेरे को मिला है, इंद्रियां मिली हैं, मन मिले हैं, बुद्धि मिली है। ये किसके मिली है? यज्ञ करने के लिए। जैसे मान लो आप यज्ञ कुंड में बैठे हो और सामग्री है हवन की, एक है हवन के लिए घी, एक है उसके लिए बर्तन, एक है थाली, तो वही है मन, बुद्धि, इंद्रियां। ये उपकरण किए हैं, इनके द्वारा यज्ञ करो, अपने लिए इस्तेमाल मत करो, बहुत दंड मिलेगा। आप सोचो ठाकुर जी के थाली बना के जिसने 56 भोग बनाया, ठीक है, 56 भोग बना के कोई ठाकुर जी को भोग लगाने लेके जा रहा है और दूसरा व्यक्ति आके उसे खुद खाना शुरू कर दे, उसका क्या होगा? या अपने बच्चों को दे दे तो क्या होगा? दंड मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो ठाकुर जी के लिए था। ये सारे उपकरण जो हैं, मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, ये हमारे नहीं है। ये भूल को हटा दें, ये हमारे नहीं है, हमें मिले हैं। जब विष्णु, अरे हमारे कैसे होंगे? जब हम महाविष्णु के देह में होते हैं महाप्रलय के बाद, तो ये मन, बुद्धि, अहंकार हमारे साथ नहीं, तो हम होते हैं, ये हमारे साथ नहीं होते। ये जड़ है, हम चेतन हैं, ये हमें मिले हैं। हमारी कोई चीज नहीं है, हमारा कुछ नहीं है। अरे भाई, ये जो जीवन है ये गिफ्ट ऑफ गॉड है। लाइफ इज गिफ्ट ऑफ गॉड। जीवन जी रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, ये भगवान की कृपा है। हमारी नहीं है कोई चीज। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में हमारा एक इंसान भी नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में कोई हमारा नहीं है। हमारे सिवा भगवान है। हमारा हमारी मन नहीं है, हमारा इंद्रियां नहीं है। जब हमारा मन ही नहीं है, अपनी हमारी इंद्रियां ही नहीं है, अपना हमारा शरीर है, तो कोई व्यक्ति हमारा अपना होगा क्या? जिस क्षण हम शरीर को या किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को अपना मानेंगे, वो दंड के भागी होंगे। उस क्षण मन को अपना माना तो अपने इस्तेमाल, अपने हिसाब से इस्तेमाल करोगे, यज्ञ नहीं करोगे, दंड मिलेगा। बुद्धि है संसार के भोगों में, कपड़े पहनने, खाने पीने, घूमने फिरने के लिए करेंगे तो यज्ञ को नहीं है तो दंड मिलेगा। यज्ञ अर्थात कर्मणों अन्यत्र लोको यम कर्म बंधना। ये हमारे लिए कभी ना, ये मन, बुद्धि, इंद्रियां ना हमारे कभी थे, ना हमारे कभी हैं। आप ऐसे समझिए, ये सृष्टि भगवान की श्वास, इच्छा हुई तो सृष्टि हो गई, ब्रह्मांड हो गए, उससे पहले ब्रह्मांड नहीं थे। ये सारे ब्रह्मांड किससे बने हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और ये सब कुछ किसकी संपत्ति है? भगवान की संपत्ति है। ये शरीर किससे बना हुआ है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, एक पहाड़ जो है वो इतना पत्थर का बड़ा टुकड़ा है, उसका छोटा निकाल लो तो भी पहाड़ जो है वो टुकड़ा ही है उसी पहाड़ का। उसी प्रकार के सारी सृष्टि जो है भगवान की संपत्ति है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बनी हुई, उसी प्रकार ये शरीर भी उसी तत्वों से बना हुआ है, उन्हीं की संपत्ति है, उन्हीं की संपत्ति, उन्होंने उनकी सेवा के लिए हमारे को दायित्व दिया है मानव जन्म में। बस ये हमें मानव जीवन सुख दुख भोग लेने के लिए नहीं मिला कि सुख दुख ले रहे हैं, आज मेरे बच्चे के बड़े नंबर अच्छे आए हैं, ये नहीं, इसलिए नहीं मिला मानव जीवन। हमारा हर क्षण जो है क्या ये यज्ञ हेतु हो रहा है कि नहीं हो रहा, यदि यज्ञ है तो नहीं हो रहा, तो प्रत्येक क्षण आप खुद सोच लीजिए कितने कर्म बंधन होंगे। और वाणी से किसी को हम कोई भी बात बोलते हैं, वाणी से भी कर्म बन रहे हैं, सोचो। अब ये सोचो हर क्षण मानव जीवन का ये यज्ञ कुंड पे बैठने के लिए मिला है और कोई कार्य नहीं, कोई कार्य नहीं, ये मानव जीवन परिवार चलाने और धंधा करने के लिए नहीं मिला, यज्ञ के लिए मिला, केवल यज्ञ, यज्ञ अर्थात कर्मण। जैसे हम शरीर से भोगों को त्याग करते हैं करते हैं, वैसे मन से भी भोगों को त्याग करना अति 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 आवश्यक है। मन से भोग क्या होते हैं, किसी भी वस्तु को या किसी भी व्यक्ति को अपना मान लेना, ये मन का भोग है। अपना किस लिए मानते हो, इसलिए मानते हो क्योंकि उससे सुख मिलेगा। हम बोल रहे हैं सुख लेने के लिए मिला नहीं है, सारी समस्या ये हमारे मन में बैठ के देखो सुख कैसे मिले, और यही सारे पापों का कारण है। तो उन सुख कैसे मिले के लिए हम हर एक वस्तु हर एक व्यक्ति को निचोड़ने की कोशिश करते हैं, ऐसे निचोड़ के मुझे सुख मिल जाएगा व्यक्ति को या वस्तु को। किस लिए किसी को अपना मान रहे हो बताओ, सुख मिल रहा है यही भ्रम है ना, ये भ्रम ना हो तो किसी को अपना मानोगे, उससे मुझे सुख मिल रहा है। माना जीवन सुख मिलने के लिए नहीं मिला, पहली बात तो सुख भी नहीं है, भ्रम है। मानव जीवन केवल यज्ञ करने के लिए मिला है, सुख दुख से जीव को अगर कोई संबंध नहीं होगा तभी वो यज्ञ सही रूप से कर पाएगा, नहीं तो अपने ही चीजों में मन उलझा रहेगा। अगर हमने किसी को भी मेरा माना, किसी भी वस्तु को या किसी भी व्यक्ति को, तो भगवान को मेरा नहीं माना, किसी को भी जब भी माना तो भगवान को अपना नहीं माना, और अपने लिए हमने कोई कर्म किया तो क्या होगा, हम उस कर्म से जुड़ जाएंगे और कर्म फल से जुड़ जाएंगे। अगर हम अपने लिए कोई भी क्रिया करेंगे तो हम उस क्रिया से जुड़ जाएंगे, कि जैसे उदाहरण दे कि मैंने कोई काम करना है जिससे मुझे पैसे मिले, या कोई भी कुछ भी करना है, कोई मैच देखना, कुछ भी, तुम क्रिया से जुड़ गए, यज्ञ को नहीं कर रहे। तो जब क्रिया से जुड़ोगे, क्रिया क्या होती है, जड़ के चेतन, या कर्म फल तब लेना बंधन तब होता है जब हमें संसार में किसी भी व्यक्ति से या किसी भी वस्तु से सुख लेने की इच्छा हो तो कर्म बंधन होता है। अच्छा बोलोगे समझ लो कर्म बंधन क्या होता है, कर्म बंधन सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर आपको कोई लेने की इच्छा है तो आपको कहां आना पड़ेगा, यहां कुछ भी लेने की इच्छा हो, किसी से भी लेने की इच्छा हो, अगर आपको कुछ चाहिए अपने लिए स्वार्थ से तो आपको आध्यात्मिक जगत को मिल नहीं सकता, तो आप क्या करें भगवान, भाव ग्रही जनार्दन, भगवान आपके आध्यात्मिक भाव ग्रहण करते हैं कि मेरी सेवा अगर आप करना चाहते हो, भगवान कहते हैं तो मैं तुम्हें अपना आध्यात्मिक जगत दे दूंगा, ठीक है, पर आपको ये वाला भाव भी तो ग्रहण करेंगे कि आपने किसी को पत्नी मांगने का सुख चाहिए, क्या करें वहां, तो आपको ऐसा सुख मिल नहीं सकता, किसी के बच्चे को अपने कंडलिंग का सुख चाहिए तो वहां तो नहीं मिलेगा, क्या करो, यही आना पड़ेगा। अरे रोहिणी बलराम साक्षात भगवान है, उनसे उतना प्रेम नहीं करती जितना श्री कृष्ण से करती, सोचो उनकी संतान है भगवान है, फिर भी देखो किसी भी वस्तु से या किसी भी व्यक्ति से भगवत संबंध युक्त दृष्टि जब तक नहीं होगी किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु पे, तो उस क्षण कर्म बंधन है और कुछ अपने भोग के लिए है, सीधी सीधी सी बात है, वो तो एक नॉर्मल लेवल का मेरी पत्नी है, तो आपने सीधा किसी को अपना मान लिया। सीधा मंजरी वो है जो सीधा कृष्ण को भी अपना नहीं मानती। अगर सीधा कृष्ण को अपना मान रहे हो तो भी आप भगवत धाम के रूप में मंजरी रूप में नहीं जा सकते, सती सहचरी रूप में नहीं जा सकते। सीधा सीधा संबंध कृष्ण है, वहां पर सीधा कितनों से संबंध करे हुए, कितनों से सीधा संबंध है। क्या ठीक है बेटा, जिसे भी नहीं होती बेटा है। ये मेरी मिसेज है, मिसेज मेरा ना किसी से संबंध था ना है ना हो सकता है, कोई नहीं सकता। कैसे होगा, मैं तो मैं चिन्ह सकता हूं, इसका संबंध कैसे थी? अरे इसका शरीर से संबंध नहीं है, किसी और से कैसे संबंध हो सकता है? एक क्षण भी किसी को अपना माना, पत्नी पति बच्चा दोस्त दुश्मन, जिस क्षण जिसको माना अपना, कर्म बंधन हो गया, पाप हो गया, महापाप हो गया। भगवान की ये सारी सृष्टि अनंत सृष्टि भगवान की है, उसमें से इस शरीर को जो कि भगवान का है 24 घंटे अपना मान के अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने सुखों के लिए, अपने कपड़े पहनने के लिए। बच्चों क्या बोलते हैं, बेटा कैसे लग रहा हूं मैं कपड़े पहनने? आप जैसे लग रहे हो पाप तो कर रहे हो। आपने शीशे में देखा, अच्छा पाप यज्ञ तो नहीं था ना, आप अभी रीडिंग कर रहे हैं तो ये बना देना, अच्छा हो गया पाप। कुछ खाना है, गुलाब जामुन या बना लो या ले आऊंगा, भोग लगा के खाऊंगा। तुम भोग लगाओ ना लगाओ पाप ही कर दो। कहो यहां भोग के बाद तो पाप नहीं होता। किसके लिए तुमने किया, ये तुमने यज्ञ किया, तुमने भगवत नित्याकरण किया, हां या ना? नहीं तो क्या किया, पाप किया। अच्छा जब कोई भी हम कर्म करते हैं तो उसके दो परिणाम होते हैं, एक तो उसका कर्म फल मिलता है, दूसरा वो संस्कार और दृढ़ हो जाता है, ये पदार्थ जो है इससे इसमें सुख है और मैं लेके रहूंगा खाके। अब देख रहे कितना खतरनाक और घिनौना कार्य है, पदार्थ में सुख है और मैं लेके रहूंगा और मनुष्य जीवन मेरा यज्ञ करने के लिए। हम जिस क्षण की सोच रहे हैं कि मेरे को कोई सुख चाहिए किसी भी व्यक्ति से या किसी भी वस्तु से, वो मनुष्यपना नहीं है। हम तो ये लोअर लेवल बोलते हैं, वो मनुष्यपना है, वो असुरपना है, राक्षसपना। किसी भी क्षण कुछ भी चाहिए अपने लिए। एक बात बताओ, जो यज्ञ के लिए भगवान के लिए वस्तुएं रखी गई हो हवन कुंड पे, उसे कोई अपने लिए इस्तेमाल करे तो उसे मानव बोलोगे असुर? असुर तो ये असुर बना है। अपना इंद्रियों को मान लेना जिस क्षण, अपने लिए मन बुद्धि इंद्रियां शरीर, इनको अपना मानना या अपने लिए मानना, ये दोनों अत्यंत दंड के पात्र हैं। जो भी ये कार्य करते हैं इनको अपना मानते हैं कि मेरी ये अपने लिए, मेरे को इंडिपेंडेंट सुख देने के लिए। देखिए इंडिपेंडेंट कोई संबंध मत रखें हम किसी भी वस्तु से व्यक्ति से, क्योंकि ये सब हमें मिले हुए हैं। किसलिए मिले हैं? बिछुड़ने के लिए। ये हमें मिले किसलिए? ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये अहंकार, ये इंद्रियां, ये ममता, ये आसक्ति, ये सब क्या है? जड़ जगत की हैं। तो जब तक हम जड़ जगत से जुड़ेंगे, तो जब हम जुड़ गए जड़ जगत से, तो उसी को बंधन कहते हैं। जिस प्रकार से जुड़े उस प्रकार का बंधन हो गया। आप नहीं जुड़ रहे तो आपको कोई बंधन नहीं है। हर एक को कैसे देखना चाहिए, तीसरे ऐसे देखना चाहिए कि ये भगवान के अंश है और मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, इनका मुझसे कोई संबंध नहीं है। चाहे हम अपने आप को नाटक में एक दूसरे को पति पत्नी बोलते लोगों के सामने, ये नाटक है, स्वांग है। माने मत अंदर से, अगर आप मान रहे हो किसी को अपनी पत्नी या बच्चा, अब बोलो या ना बोलो, सो या जागो कर्म बंधन है। आप सो जाओ तो भी आप क्या क्या सोच के सो रहे हो कि ये मेरे वस्तु है, ये मेरे पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा मकान है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। क्या यज्ञ रूप में सो रहे हो? क्या यज्ञ रूप में जो यज्ञ करता है उसके लिए उसको क्या चाहिए होता है? सिर्फ यज्ञ किया, थोड़ा सा भोजन खाया और थोड़ा सा आराम करने को मिल गया, थोड़ा सोने गया, फिर से यज्ञ करना है। यज्ञ को आप ऐसे समझो ना, हवन कुंड वाला ही समझ लो यज्ञ। तो तन ढकने के लिए कपड़ा, मुट्ठी भर अनाज और थोड़ी सोने की जगह। इसके अलावा जो भी हमारे सोच है, कार्य है, वो सिर्फ कर्म बंधन है, पाप है, महापाप है, महा महा महापाप। आप अपने किसी को पत्नी मानो या पिताजी मानो या कोई आपको मान ले, वो सब पाप है। अपना माना किसी को भगवान के अलावा, तो उसकी इच्छा पूर्ति कैसे होगी? उस इच्छा की पूर्ति आप मर गए किसी को मान के, उसकी इच्छा पूर्ति कैसे होगी? कैसे होगी? इस जगत में तो आके होगी। ये 84 लाख योनियां जो है, चाहे देवता की योनि हो चाहे नारद की योनि, सब भोग योनियां, सब भोग योनियां। केवल मानव जीवन ही जो है ये कर्म योनि है। और कर्म क्या है? यज्ञ अर्थात कर्मणो। यार भगवान की प्रसन्नता के कार्य करेंगे तो केवल क्रिया होगी, कर्म नहीं होगा। तो हम केवल क्रिया करें, भगवान की क्रिया लगातार, संडे मंडे ट्यूजडे लगातार सिर्फ यही क्रिया हो। सुबह उठ रहे हैं, जप कर रहे हैं, वो भगवान की क्रिया है। फिर अध्ययन करते हैं, गायत्री करते हैं, वो सब ठीक है। हमें सोचते भी नहीं है कि सकामता से, सकाम मतलब कोई कामना के साथ कर्म। जब कामना के साथ कर्म करोगे उसका फल तो आपको मिलेगा ना। हम सोचते ही नहीं है, देखो कितने आंखें बंद कर करके चल रहे हैं। किसको भी पूछता भी नहीं है कि ऐसा ऐसा क्या कार्य हमें दिन रात करना चाहिए जिससे वहां से भगवान की प्रीति उत्पन्न हो और कर्म बंधना ना हो। ये बेसिक क्वेश्चन होना चाहिए कि नहीं सबका? क्या कभी किसी ने पूछा? कितने आसक्त, कितने आसक्त होंगे? ये तो प्रतिक्षण वर्धन हो रहा है कर्मों का, और मोचन होना चाहिए प्रतिक्षण। कर्म करने ही बहुत चाहिए, पहली बात उसका फल ना मिले, दूसरी बात पुराने जन्म। अगर हमें कुछ खाने की इच्छा हुई, पहली बात तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने कोई कमी ही नहीं है। आप आत्मा हो और चेतन अमर सहज सुख राशि, अरे सहज सुख राशि हो आप, आपने कमी हो ही नहीं सकती। आप कोई कमी खा ले नहीं सकती असली में। आप ये भ्रम में मान रहे हो कि आप में कोई कमी है और आपको कोई वस्तु चाहिए और आपको कोई व्यक्ति चाहिए, ये आपका भ्रम है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आपको कोई वस्तु नहीं चाहिए, आपको कोई व्यक्ति नहीं चाहिए। अरे ये दो चार बच्चों को छोड़कर घर में बैठे, अरे बच्चे क्यों, वो भी आपको नहीं चाहिए, आपको कोई नहीं चाहिए। आपको कोई बस कोई गुलाब जामुन कोई कुछ नहीं चाहिए आपको। आप चेतन अमर सहज कुक राशि को कैसे नहीं हो? आपको कुछ चाहिए तो आप भ्रम में हो, आप मूर्ख हो, आप मूर्खता का व्यवहार कर रहे हो, कर्म बंधन बढ़ा रहे हो। अब जिस क्षण सोचते हो कि मुझे कुछ चाहिए, आपके कर्म बंधन स्टार्ट हो गए। आपको क्यों चाहिए कुछ? आप पागल हो क्या? आपको कोई अपना क्यों लगता है? आपका कोई अपना नहीं है, त्रिकाल में कोई अपना नहीं था, ना कोई होगा ना है, कैसे कोई अपना पत्नी हो सकता है? जिया का कैदी मिल गया आपको साथ रहने के, 10-50 साल रहे हो, आपका अपना हो गया। और मानते हो हम ऐसे मेरे हैं, नहीं है कोई आपका, आपको कुछ नहीं चाहिए, त्रिकाल में कुछ नहीं चाहिए आपको। अरे मानने के बाद क्रिया करना तो छोड़ो, माना और यज्ञ खत्म, मेरा है, हो गया कर्म बंधन, हो गया यज्ञ खत्म। यज्ञ ये मान के किया जाता है कि मेरा कोई है, भूत शुद्धि कौन करता है? पूजा करते हो डीटी वर्षी, भूत शुद्धि क्या होता है कि मेरा कोई नहीं है, मेरे लाडली लाल है, यही होती है भूत शुद्धि, और कुछ होता है? लाडी लाल की जय, प्यारी लाल की जय। तो मेरा कोई नहीं है, पूजा करने से पहले करके सारे क्षण तो पूजा है, बात तो यही है। कौन सा क्षण पूजा नहीं है, यज्ञ अर्थात कर्मणा अन्यत्र लोकयन कर्म बंधना क्लियर हो गए। तद अर्थ कर्म कौन थे, किसी तद अर्थ किसी अर्थ में कर्म करो, कुंती पुत्र तुम, कुंती पुत्र या तुम कोई भी पुत्र हो, किसी अर्थ में कर्म करो। मुक्त संग समा, मुक्त हो जाओ सब संबंधों से, सब वस्तुओं के संबंधों से, व्यक्तियों के, तुम तुम्हारा कोई नहीं है। प्रिया लाल के अलावा तुम्हारा कोई नहीं है। देखो संत जो है प्रिया लाल के अलावा किसी को भी अपना नहीं मानते, वो केवल संतों के कर्म बंधन क्षय होते हैं। तो संत को बनना होगा ना, ये संसारी बिजनेसमैन और हाउसवाइफ और ये क्या है, सुबह माला कर लिया, उसके बाद 8-9 बजे हो गया पूजा पाठ, 9 से 9 पूरी हाउसवाइफ बन गई, पूरी टोटल एक एक एटम हाउसवाइफ का, यहां से लेके शिकाग से नफाग तक हाउसवाइफ, चिंतन हाउसवाइफ, प्रिया हाउसवाइफ, वो बिजनेसमैन साहब मिस्टर बिजनेसमैन, पूरा एक एक परमाणु भूल गए कि मैं दास। अगर कर्म बंधन से वास्तव में कोई मुक्त हो रहा है, कोई पहली बात तो यह है अत्यंत प्रज्ञाप्त करेगा गायत्री माला, उसके बाद ये क्लियर होगा कि मैं दासानुदास में भाव में सेवा के लिए कर रहा हूं कोई काम, नहीं तो नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं क्यों करूं बिजनेस या कोई भी काम, क्यों करूं, नहीं करना, सेवा है हाँ तो करना, बिल्कुल हर क्षण सेवा का भाव हो। बिजनेस में बैठे हुए रोए कि मैं डायरेक्ट भक्ति क्यों नहीं कर पा रहा, वहां बैठे बैठे भी दिन रात क्यों, मुझे अपने लिए बिजनेस नहीं करना, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरा इस संसार में कोई नहीं है, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए और मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना अपने लिए, कुछ भी नहीं करना। कोई बोला जीवन निर्वाह कैसे होगा, 84 लाख योनि में एक एक योनि का जीवन निर्वाह भगवान कर रहे हैं, एक आप का ही नहीं करेंगे वो भक्ति करोगे, क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग है। वो कहते हैं मेरे हृदय में रहते हैं साधु, कितना प्रेम करते हैं, आपका जीवन निर्वाह भी वो नहीं करेंगे जो आप हर्षण भक्ति करोगे। ये ठीक बात है, जीवन निर्वाह हम सोचते रहेंगे, मतलब आप ही करता हो हर चीज के, जब मां के घर में थे ना तो हर जगह थी ना सिर्फ टट्टी खून यही सब था, वहां भी आपको मीठा मीठा दूध मिला था। तो जीवन निर्वाह के लिए जो जो चीज जिस जिस चीज को जब जब चाहिए ठाकुर जी सबके लिए हमेशा करते। तो जीवन निर्वाह की चिंता नहीं करनी है, चिंता यह करनी मैं यज्ञ कर रहा हूं कि नहीं, जीवन निर्वाह तो ठाकुर जी कर ही देंगे, जब तक श्वासें हैं तो जियो के कैसे जब अंदर कुछ नहीं जाएगा। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना, किसी से परिचय मत बनाओ, साधु संत वो है जिनका कोई भी लौकिक परिचय किसी से नहीं होता, कोई भी लौकिक परिचय लौकिक संबंध किसी से नहीं होता, हम प्रिया युगे हैं और किसी के नहीं है, ठाकुर जी के भी नहीं है सीधे सीधे तो, और यहां किसी को भी हम अपना बना लेते हैं। अगर किसी से परिचय रखोगे तो राधा रानी से परिचय तो कभी हो नहीं पाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा। हर जगह से संपूर्ण ममता को हटाना ही होगा। क्या हमारे हमने ये प्रवचन सुने जननी जनक बंधु सूत्र धारा, क्या हमारे जीवन की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हुई है कि मैं सबसे अपनी ममता को हटा दूं? तो जब रखा हुआ है तो ममता अगर संसारी व्यक्तियों में है उसका भोग करने के लिए कहां आएंगे, इसी संसार में तो आना पड़ेगा। संपूर्ण ममता को हटाएं, संपूर्ण आसक्ति को हटाएं, संसार के किसी भी जन्म से हटाएं पूर्ण रूप से, थोड़ी से नहीं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि कोई तरुण को रिपेयर करना चाहता है, कोई नीली को रिपेयर करना है, भैया रिपेयर से कुछ नहीं होने वाला, ये बियॉन्ड ये फिएट गाड़ी है 8 लाख किलोमीटर चलिए कभी ठीक नहीं होगी, इसको खत्म करो, इसका चैप्टर ओवर करो और रिप्लेसमेंट करो, इसकी रिपेयर मत करो, रिप्लेस करें इसको, रिपेयर करने से हम क्या है वो थोड़ा इंप्रूव कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, उधर थोड़ी सी अच्छी में थोड़े पहले से बेटर, पर वो तो वही ना, आपका मूल देश तो वही है ना, मतलब आपका केक तो वही है, उसके ऊपर कर रहे हो ना नकाशी, तो वही है अपने इंप्रूवमेंट के थोड़ा बेटर। अरे मूल तुम्हारा ही गलत है सारा, यहां मानव जन्म या तो कुछ भी नहीं चाहिए, आप सहज सुख राशि हो, सहज सुख राशि, आपको कोई भी नहीं चाहिए, आपको पति भी नहीं चाहिए, बच्चे भी नहीं चाहिए, ससुर भी नहीं चाहिए, उनसे प्राप्त होने वाली तो कोई चीज चाहिए ही नहीं है, वो देंगे क्या, जड़ जड़ देंगे कुछ लोग, भगवान दे देंगे आपको, आपके पति बच्चे और ससुर जी और भाई साहब और जो भी साहब है वो जड़ देंगे ना। आप अपने आप को दिमाग में बिठाओ, क्या जड़ से चेतन को व्यक्ति मिलेगी, जड़ वस्तु से चेतन व्यक्ति को, जड़ मतलब डेड वस्तु से किसी जीवित व्यक्ति को कुछ मिलेगा, सोचो। और हम क्या बेवकूफी का नंगा नाच कर रहे हैं, मतलब हमारे टी शर्ट डाली हुई आई एम अ फूल, तभी हम ये कार्य कर सकते हैं सुबह से रात तक हाउस वाइफ या बिजनेसमैन या जो भी। जो कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता है वो व्यक्ति, आप खुद ठंडे दिमाग सोचो कि या घर में रहे या दुकान में रहे, दुकान मतलब ऑफिस जो मस्जिद बोल लो इसको, घर में रहे तो एक खड्डा है खाई है कर्म बंधन की, क्यों उसमें अपने आप को मिस्टर ये मानोगे, उसमें मिस्टर ये मानोगे तो कर्म बंधन, इसमें कई फीलिंग आती है घर बैठे में दास दासों को दास हूं, मैं दास नहीं हूं सीधा भगवान का, मैं भगवान के दासों के दासों का दास हूं, इसलिए सेवा आप कर्म कर रहा हूं। क्या घर में बैठे हुए फीलिंग आती है, क्या ऑफिस में बैठे फीलिंग आती है, तो जिसको यह फीलिंग वो तड़कता है कि मैं हूं तो यही, ये फीलिंग मुझमें नहीं आ रही, तब वो कभी तो कह रहे तड़पना चाहिए ऑफिस में कि मैं क्यों कर रहा हूं, मुझे नहीं करना, कर ही नहीं सकता कोई काम ज्यादा तड़पेगा, नॉर्मल काम कर ही नहीं सकता कोई, रूप सनातन इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर थे अपने चीफ मिनिस्टर हुसैन शाह के ना, और उनसे काम हो ही नहीं रहा, सुंदर इतने काम दे को चकित कर दे, इतने सुंदर थे रूप सनातन, इतना पैसा अनंत पैसा, सोने भर के सोने के सिक्के भी देखे भी है उनके में, ऐसे ऐसे कूड़े की तरह होते थे, उनके कोई रुचि नहीं है, रुचि नहीं है। हम हो गए ठाकुर जी के, हमें कोई नहीं चाहिए कोई वस्तु कुछ नहीं, हमें सिर्फ यज्ञ करना है, ठाकुर जी बोल रहे हैं यज्ञ नहीं करोगे तो कर्म बंधन में फंसते रहोगे और किसी से परिचय बनाओगे तो उनसे परिचय हो नहीं पाएगा, और हम हर्षण परिचय में हमारी वो है स्थाई भाव है, रति है, आसक्ति है, भाव है, प्रेम है, सब कुछ है, कहां पे इस संसारी संबंध में रुचि है, आसक्ति है, भाव बिल्कुल है, प्रेम सब है, यहीं पे तो भगवान की प्राप्ति कैसे होगी आप बताओ। हम ये सोचते हैं हमारे कार्य करने से हमें कुछ चीज प्राप्त हो जाएगी, आपको जो भी व्यक्ति प्राप्त होते हैं पति पत्नी या फाइनेंशियल पैसा जो प्राप्त होता है या सर्कमस्टांसेस, ये आपको पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के द्वारा जो प्रारब्ध बनता है उससे प्राप्त होते हैं। आप इस जन्म में जितनी मर्जी मेहनत कर लो जितना मिलना है उससे एक एक तिनका भी ऊपर नहीं मिलेगा, आप मेहनत ज्यादा करते हो कि ज्यादा, हम कह रहे हैं तिनका भी आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, ये भगवान का विधान है, गलती से थोड़ा हो रहा है कुछ भी, विधान है ठाकुर जी का, उनमें मिस्टेक हो सकती है, तिनका नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा, कोई सोचते हमारा अपना घर हो जाए, अरे भाई लिखा है तो मिल जाएगा, नहीं लिखा तो जो मर्जी कर लो नहीं हो, ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं कर सकते, तो ना सुख का बोध करो इस बात में ना दुख का कि दुख हो रहे हैं मेरा घर नहीं है और सुख हो रहा है कि मेरा घर है, दोनों ही गलत है, क्योंकि यज्ञ तो नहीं है, केवल भगवत कृपया चिंतन करो, जितना मिलना है सुखी होगे तो नुकसान तो हानि, दुखी होगे तो हानि, हम सोचते हैं जब दुखी होते तो ही हानि होती है, हम सुखी हो जाओ तो भी उतनी ही हानि है, क्योंकि सुख के संस्कार छप गए कि मेरे बच्चे में सुख है, आएगा तो क्या होता है पति पत्नी बच्चा वो सेम कलर की ड्रेस पहन के जाते हैं, क्या थीम कोड क्या बोलते वो नहीं बोलता है ड्रेस कोड, मतलब पूरा परिवार मतलब इतनी आसक्ति, इतनी आसक्ति, वो कह रहे कि जो कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता है तो किंचित मात्र भी ममता नहीं होनी चाहिए, किंचित मात्र इतनी सी भी ममता नहीं होनी चाहिए किसी व्यक्ति में। कभी कोई स्वप्न भी ना लगे कि मेरा कोई अपना है, हमें तो कोई अपना नहीं लगता, लेकिन मतलब ही नहीं किसी से। और ये स्थिति में आना तो पड़ेगा, नहीं आएंगे तो ऐसे भक्ति में आके फायदा भी क्या। हमने भक्ति को रिचुअल बना के रख दिया, सुबह पूजा पाठ किया, फिर बिजनेसमैन और हाउस वाइफ खत्म हो गया, सारे प्रवचन एक तरफ। अल्टीमेटली मैं तो धंधे वाला हूं और मैं ये भाई हूं या माई हूं या जो भी हूं, ये क्या है, ये कोई ये भक्ति कोई रिचुअल है, सुबह सोना फिर या 64 या जो भी आपने नंबरिंग करी हुई है, ये नहीं है। अनन्य ममता विषय, अनन्य ममता, पूर्ण ममता, ममत्व से पूर्णता रहित होंगे यहां पे तो हम डाल पाएंगे। जब आप किसी को भी अपना मानते हो तो आपका व्यक्तित्व बना रहता है कि मैं ये हूं, जबकि आप ये नहीं हूं, यू आर नॉट व्हाट यू थिंक यू आर, जो आप शीशे में देखते हो या बिल्कुल नहीं, और हम यही मानते बिल्कुल मैं यही हूं। आसक्ति और स्वार्थ भाव से कर्म करना ही बंधन है, बंधन क्रिया से नहीं होता, कामना और आसक्ति और ममता से जो भी क्रिया किया जाती है, कामना इच्छा कि मुझे ये करके सुख मिलेगा, इच्छा कामना ममता कि ये मेरा है, कामना ममता आसक्ति क्या इसके बिना तो मेरा काम नहीं है, मेरे को तो खाने का गुलाब जरूर या जिसको वृंदावन वृंदावन किस लिए दी है, कोई मुझे कितने भी कष्ट दे दे मैं तो केवल ब्रज में जाके जमुना का जल पी के पत्ते खा के खुश हो जाऊंगा, मैं पूरा दिन भजन कर। त्यक्त्वा पूर्णम अशेष मंडलपति सदा तुच्छ व्रत, त्यक्त्वा पूर्णम खरबों पति थे गोस्वामी जन, खरबों पति सब तत्व पूर्ण ऐसे त्यागा जैसे कोई मद त्यागते, मद का तुम द्वारा देखते हो कैसा था वो, कैसी शेप में था, कभी देखा किसी ने ऐसी शेप, याद रहती है मेमोरी हमको सब याद है, मेरी पत्नी है ये है, सब मद वक्त त्याग देता है व्यक्ति मन से, सब तत्व पूर्णम अशेष मंडल पति। तो यहां किसी को फिजिकली त्यागने के नहीं बोला, सब अपने पास ही रखो भाई, आप अपने पास रखो पर मन से किसी को अपना मत मानो, आपसे ना कोई लेना चाहता है कुछ, आपको ये कह रहे मन से सिर्फ ठाकुर जी को अपना मानो, किसी से कोई सुख नहीं मिलने वाला, ये गांठ बांध दो और यज्ञ घात कर्मणा करो, नहीं तो अपने पांव पे रोज कुल्हाड़ी मार रहे हो, रोज उंगली एक काटे जा रहे हो, उंगली का पांव ही रोज काटे जा रहे हो, चलने लायक नहीं हो यज्ञ। अशक्तियां कामना ममता के संसार में गॉट इन दॉट इन द वेब ऑफ कामना ममता एंड अशक्ति, इससे इसके अंतर्गत जो भी कर्म है आप सो रहे हो वो भी कर्म है, सोना भी कर्म है, इसलिए सो रहे हो तुम सुबह उठ के मैं फिर हाउस वाइफ बन जाऊंगी, कॉन्शियसनेस तो यही है ना, और आप हम किस लिए सो रहे हो कि हाँ जी मैंने धंधा करना तो बस हो गया काम आपका, आपका सोना भी पाप में है, जानना पता क्या होगा। देखिए साइंस है, हम ये समझाने आए हैं कि ये विज्ञान को समझे, बहुत खतरनाक और बहुत बढ़िया जीवन जी रहे हैं और इससे कुछ प्राप्त नहीं होने वाला, बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन वाली भक्ति है इससे किसी को कुछ प्राप्त नहीं होगा, ये बहुत जरूरी है समझना, बहुत बहुत जरूरी है। ये सब अन्यत्र कर्म है, कर्म है, या तो यज्ञ कर्म होता है, या भगवान कह रहे हैं यज्ञ अर्थात कर्मो अन्यत्र लोकोदन कर्म बंधन, ये अन्यत्र कर्म की श्रेणी में सबके सब आते हैं। अपने सुख के लिए किया गया कर्म तो बंधन कारक है ही है, अपने हित के लिए किया गया जो कर्म है वो भी बंधन कारक है, कि मैं अपने लिए कुछ कर रहा हूं, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, ठाकुर जी जब मेरी क्रियाओं से प्रसन्न होंगे तो उस क्रिया से प्रसन्नता के बाद जो फलस्वरूप जो उनकी खुशी होगी वही मेरे हृदय में आएगी तो मैं खुश होगा, ये साइंस है। अपने लिए कुछ भी कर रहे हो तो अपने सहज के राशि स्वरूप से ही आप दूर हो गए, भगवत प्रीति का सुख है वो तो अलग है, आप समझ रहे हैं, जो भगवान की भक्ति से जो आपको सुख मिलेगा वो तो बहुत ऊंचे दर्जे का है, जो आपका सहज सुख राशि स्वरूप है, आत्मा का जो सहज स्वभाव है, सहज सुख राशि उससे ही अलग हो रहे हैं, जिस क्षण किसी को अपना मानते हैं या अपने लिए मानते हैं। किसी भी व्यक्ति को या किसी भी वस्तु को। ये जो है मानव जन्म, ये एक बहुत अद्भुत खेत है। खेत मतलब खेत जिसमें बीज बोए जाते हैं, ये ऐसा खेत है कि अगर आप भगवत भक्ति के यज्ञ के कर्म करोगे, ऐसे बीज बोओगे, तो सारे जो आपके पुराने बीज हैं सब नष्ट हो जाएंगे, खत्म। नहीं तो ये ऐसे बीज बो रहे हो मानव जन्म में किसी को अपना मान के कि 84 लाख योनियां भी इससे निपट जाएंगी, नरक में भी हो जाएंगी, उसके बाद भी अंबार का अंबार एक मनुष्य जन्म का भी पड़ा रहेगा। अनंत जन्मों के अंबार पड़े हुए हैं। थोड़ा होश में आए, ठीक करें स्वयं के विचारधारा को। ये बहुत बहुत खतरनाक है कि जब हम सेवा में होते हैं हम बहुत खुश रहते हैं, सेवा के दिन खुश नहीं रहते, क्योंकि जब हम भगवान की प्रीति के लिए कार्य कर रहे हैं, सेवा से कार्य कर रहे हैं, तो हम चिन्मयता में जुड़ रहे हैं, तो चिन्मय तो उसमें तो सुख है ही है। अगर भगवत गीता की भाषा समझे, तस्मात सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, तस्मात सर्वगतम ब्रह्म, भगवान तो सर्वगत है, तस्मात सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, वो नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित रहते रहते हैं। तो जब आप केवल भगवत विद्या कर्म करोगे तो निस्संदेह एकदम महासुखी रहोगे ही रहोगे। नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम तस्मात सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, वो यज्ञ में रहते हैं, आनंद सेवा में रहता है। यदि वो सेवा सकाम ना हो बिल्कुल, इसलिए हम मैंने कहा जब सेवा करोगे तो खुश रहोगे ही रहोगे, और सेवा 24 घंटे करनी है, ये हाल बता दें। सेवा मतलब होता है यज्ञ, यज्ञ वे विष्णु। तो सेवा में सेवा करके आनंद नहीं आता, सेवा स्वयं आनंद स्वरूप है, वो चिन्मय है। जिसको सेवा करके आनंद नहीं आता, मैं तो कहा अच्छा यार सेवा में तो उसी नहीं, अच्छा तुम इतने ऊंचे हो गए कि यज्ञ में जो सुख मिलता है उससे भी ऊंचे हो गए। तो सकाम सेवा थी, गलत भावना से सेवा थी, तो इसलिए नहीं तो सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, ये हमें समझना चाहिए। जब हम निर्वाह बुद्धि से कर्म करते हैं कि हाँ शरीर कैसे चलेगा, फैमिली कैसे चलेगा, या कुछ कैसे चलेगा, तो भी हमने जीने की कामना है। तभी तो निर्वाह बुद्धि सोच रहे हैं कि निर्वाह है, हमने जीना क्यों है, हम देश पर ही चले जाए, काय को जीना है, उनके प्रीति के लिए ठीक है, रखना तो रख दो, नहीं रखना उम्मत रखना, सारी चिंता एकदम से खत्म हो गई। देखो जीने की इच्छा क्यों होती है, भोग इच्छा की वजह से होती है कि मैं भोग नहीं भोग पा रहा, मर गया तो कैसे, ये छूट मेरे, मेरी पत्नी छूट मेरा, ये छूट गया मेरा, आपकी इच्छा ही नहीं है कोई, आपका अपना ही नहीं है वो, नित्य प्राप्त तो आपको प्राप्त है ही है, कामना की वजह से आपको दिखता नहीं है। आप देखो आसक्ति कामना और ममता से रहित होकर कार्य करो, तत्काल चिन्मय का अनुभव होगा, तत्काल, एक साल बाद नहीं, एक महीने बाद नहीं, एक मिनट बाद भी नहीं होगा, और एक सेकेंड बाद भी नहीं होगा, तत्काल। क्यों, नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम, वेद वाक्य भगवत वाक्य पूर्ण विश्वास और अनुभव। एक महात्मा थे, उनको इतना कष्ट दिया जाता था, स्त्री थी, क्योंकि जब शादी हुई तो उनके जो पति पत्नी ससुर सब इतना मारते थे, गालियां देते थे, और खाना बनवाना कपड़े धोना सब कुछ फटे पुराने कपड़े पहने रहते थे, और खुद अपने लिए अच्छी अच्छी चीजें बनवाते थे और उसको रूखा सूखा देते थे, और उसके बाद भी उसको जो भोग लगता था गालियों का भोग, उसकी आरती होती, झंडों की आरती होती थी उसकी, इतना मार पिटाई करती वो, पर फिर भी उसको कोई कंप्लेंट नहीं थी। हमारे को तो खाना गर्म ठंडा में कोई बलबड़ हो या उसी में हमारी कंप्लेंट शुरू हो जाएंगी, तो उसको कोई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, वो दिन रात भगवान चिंतन में डूबी हुई है, बस चिंतन चिंतन, मैं उनकी हूं, मैं मेरे तो है नहीं, मुझे तो कोई कुछ कह ही नहीं रहा, दिन रात चिंतन, दिन रात चिंतन। एक बारी किसी को कीर्तन में चली गई कि महात्मा लोग आए कीर्तन करके आ दो, कीर्तन में होके आई, कीर्तन में थी तो पता चल गया कि आपकी बहू कीर्तन में गई, लाया मारा डंडे, पहले खाना मिलता था कभी कभी, अब तो कई दिन इकट्ठे खाना भी नहीं पीला उन्होंने, वो इतनी भूखी प्यासी हो गई, दुर्बल हो गई, पर कंप्लेन कर रही हमेशा नित्य यज्ञ प्रतिष्ठित, ये होटल में कोई नहीं चाहिए, हमें कोई वस्तु नहीं चाहिए, कोई किसी के, हम ये नहीं चाहते कोई हमें अच्छा कहे, मैं अच्छी पत्नी, कोई मुझे कहे अच्छी बहू, ना हमें कोई कुछ भी कहे। तो उसकी बड़ी इच्छा थी, लंबी कथा बताएंगे बाद में कभी, कि एक जगह जाने की, कि वहां पे भक्ति करेंगे, तो वो जा नहीं सकती थी, उनके बेड़ियां बांध दी, उनको खाना देना बंद कर दिया। तो ठाकुर जी रुक्मणी को बोलते हैं मैं जा रहा हूं मेरे घर को जरूरत है, ठाकुर जी स्वयं उसके पास सखी रूप में आए, बोले कि तुम जाओ वहां पे पंडरपुर सेवा के लिए, इसलिए बनते मैं यहां पे तुम्हारे यहां। तो ठाकुर जी उनका रूप धारण करिए, वही फटे पुराने कपड़े, वही सब कुछ, क्यों नित्य यज्ञ प्रतिष्ठित, वो वहां चले गए, ठाकुर जी उसके रूप में यहां रह रहे, मान लो जैसे मान लो आप बन के आपके घर में रह रहे, आप नहीं हो क्योंकि आप तो चले गए, और उनकी गालियां भी वैसे ही खा रहे हैं, वो तो बारिश में आएंगे ना, वो थोड़ा ना ठाकुर जी आएंगे आरती करेंगे आज सुबह ना, भोग लगाएंगे वो ठाकुर जी भी तीनों टाइम व्रत और डंडे और गालियां, ये होता है प्रेम ठाकुर जी, और ये होता है भक्त का रेजिलियंस कि मेरे को कोई कितना भी कष्ट दे दे, मेरा चिंतन उनसे है, मैं किसी को अपना नहीं मानता, मैं कोई वस्तु नहीं चाहता, मुझे कोई सुख नहीं चाहिए संसार में, निश्चयात्मक बुद्धि होनी चाहिए, मुझे संसार का कोई सुख नहीं चाहिए, जिस क्षण आप सोचते हो संसार का कुछ अन्यत्र कर्म है डंडे पड़े के याद रखो, कोई बात बोलते मेरे को बड़ा डर लगता है, डर लगता है घर कुछ हो ना जाए, तो परमाशक्ति के गड्ढे में पड़े हुए हो, इसका ये मतलब अरे अपने शरीर का ही कोई डर वर कुछ नहीं है, जब तक रखना है रखो नहीं रखना, अपना कोई है ही नहीं हमारा, ठाकुर जी स्वयं बन जाते हैं, जूतियां खाते हैं, गालियां खाते हैं अपने भक्त के लिए, जब वो पूर्ण समर्पित हो जाता है, ठाकुर जी गालियां खाते थे एवरी डे, और डंडे भी, और फटे पुराने कपड़े में, वो जो भाग 56 भोग और राज भोग खाने वाले व्यक्ति सुबह सुबह मंगला भोग और सुबह सुबह गाली भोग खाते, किसी भी पदार्थ में वस्तु में क्रिया में ममता हो, मुझे कहना अच्छा लगता, तो वो बंधन कारक ही होंगे, मनुष्य जो है वो कर्म से नहीं बनता, वो अन्यत्र कर्म से बनता है। अरे सोचो जब हम यज्ञ में बैठते हैं तो जब आपके हाथ में रोटी देनी है तो उसमें क्या भाव होता है हमेशा, देना देना देना, तो आधे घंटे बाद भी देना देना देना, वो दो घंटे बाद देना, मनुष्य जीवन 24 घंटे यज्ञशाला में बैठे हैं तो क्या भाव होना चाहिए, देना देना, और हमारा क्या होता है हर समय लेना लेना, पति से लेना, बच्चों से सुख लेना, घर से सुख लेना, अपने मन से सुख लेना, अपनी बुद्धि से सुख लेना, कपड़ों से सुख लेना, ये हमारा अपना सुख के स्रोत है, और भी होते होंगे, अगर कर्म बंधन से मुक्त होना, हम नहीं कह रहे मुक्त होइए, हम कह रहे अगर होना है तो ये बात याद रखिए, किसी से भी संबंध रखेंगे तो देने की भावना से रखेंगे, मैं किसी से भी सुख नहीं लूंगा, निश्चय मैं नहीं, मेरे को नहीं चाहिए किसी से सुख, पत्नी से सुख, बच्चे मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं इससे, मुझे नहीं चाहिए कोई सुख नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए, सुख की बात छोड़ो मुझे उनका बनाओ भोजन भी नहीं चाहिए, प्रेशर डाल के हम तो प्रेशर नहीं थी, कौन बनाओ क्या है ये सब क्या, भोजन की कुछ निर्वाह के लिए भी नहीं चाहिए, कि मुझे संबंध रखना है तो देने के लिए, हमें जो भी सामर्थ्य मिला है सबको कुछ ना कुछ करने का, सामग्री शरीर मिला है, समय मिला है, कुछ समझदारी है, कुछ सामर्थ्य, समय, समझदारी और सामग्री, ये सारी हर समय भगवान के प्रज्ञार्थ इस्तेमाल होनी चाहिए, हर समय भगवत प्रज्ञार्थ, क्या क्या समय जो हम बिजनेसमैन और हाउसवाइफ बनते रहते हैं, बिल्कुल मूर्खता है कुछ समय सामर्थ्य सामर्थ्य हमारा और कुछ नहीं है करने का, सेवा करने में अपनी समझ अपना सामर्थ्य और समय और सामग्री थोड़ी सी बचा कर नहीं रखनी, बचा के मत रखना थोड़ी सी अपने लिए, होता ना थोड़ा सा बचा के रख लो अपने लिए, किसी भी चीज को बचा के मत रखें हम, किसी भी चीज को सेवा सामर्थ्य सामग्री कोई भी चीज है ना किसकी है उनकी सेवा में करें ना। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक कामना पूर्ति के लिए और एक कामना निवृत्ति के लिए। हम किससे खाते लड्डू खा लिए, किससे कामना पूर्ति के लिए, और एक काम कर्म का कामना निवृत्ति के लिए, हम वही कार्य करें जिससे हमारी कामनाएं खत्म हो बड़े ना। व्यक्ति कृत कृत्य तभी होता है जब अपने लिए वो कुछ नहीं करता, गांठ मान दो मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना, कुछ भी अपने लिए नहीं करना, अपने लिए जब भी कुछ करेंगे तब हम अपने लिए नहीं करेंगे, ये साइंस है। आज जब भी अपने लिए कुछ करोगे उसी क्षण आपके लिए कुछ नहीं होगा, जिस क्षण आपने अपने आप को हटाया तो आ जाएंगे, सिर्फ आप निकल जाओ अपने जीवन से, उनके आने में कोई देर नहीं है, आपके हृदय में बैठने हैं, आएंगे नहीं, आप सिर्फ निकल जाओ इस जीवन से। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रन योर लाइफ, आपको पता है यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रन योर लाइफ, लाइफ तो बिल्कुल इट्स ओन कोर्स, आप बीच में अड़ंगा डाल दो आपके आनंद में, आपके आनंद में सबसे बड़ा अड़ंगा कौन है, हमें, आपका दुश्मन और कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, ना कोई था ना होगा, आप स्वयं अपने दुश्मन। और आप ये देखिए कितना सुंदर तरीके से ये श्लोक 3:13 भगवद गीता का किसके इस्तेमाल होता है कि भोग आगे प्रसाद पाओ, ये ऐसा स्थूल मतलब है जो कि कोई संस्थान नहीं हो सकता है, तो इसका असली मतलब कुछ और है। यज्ञ शिष्टा शिना संतो मुच्छते सर्व के विषय भुंजते थे तो अधम पापम ये क्वचन थे अर्थ कहना। यज्ञ शिष्टा शिना संत, यज्ञ शिष्टा जो कि यज्ञ से बचाओ भाग इनका जीवन होता है वो क्या होता है संत मुच्छते सर्व के विषय, तो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, ये थोड़ा प्रसाद पा रहे हो सारे पापों से मुक्त, देख रहे हो प्रसाद तो रोज पा रहे बोले सब पापों से मुक्त, जीवन जिनका यज्ञ रूप है उसका अवशिष्ट जो जीवन देता है वो सारे कर्मों से सारे पापों से मुक्त हो जाता है, सारे पापों से। यज्ञ शेष का अनुभव करने पर मनुष्य में किसी प्रकार का बंधन नहीं रहता, कोई बंधन आप यज्ञ करो बंधन कैसे होगा, उनकी क्रिया कर्म है, सारी ममता उनमें है, उनके प्रीति के लिए कर्म है, कर्म बंधन कैसे होगा, जहां ममता है किंचित भी एक आयोटा और ममता भी रह गई किसी में, आयोटा हमारा आयोटा नहीं तो लोटा भी नहीं बाल्टी है पूरा, आयोटा लोटा बाल्टी हमारा तो टब है पूरा, टब भी छोड़ो पता नहीं क्या है, कि एक आयोटा भी नहीं रहना चाहिए ममता किसी भी व्यक्ति में। अच्छा अब घर जाके लड़ाई में कर तुम भाई पत्नी लिए मेरे को कोई ममता नहीं रखनी, ये बोलना अगर आप रूढ़ हो रहे हो तो कर्म बंधन तो है ही, रूढ़ नहीं हो सकते क्योंकि यदि आप यज्ञ कर रहे हो तो अति स्नेहपूर्वक आचरण है, आप किसी से खराब व्यवहार कर रहे हो तो वो यज्ञ नहीं है, ये बात याद रखिएगा कि घर जाके हम लड़ाई कर रहे नहीं, प्रवचन में सुना था हमने ऐसा नहीं कहा। मानव जीवन किसी व्यक्ति के अधिकार जमाने के लिए नहीं मिला, तुमको मेरी बात तो सुननी ही पड़ेगी, ये सब के लिए मानव जीवन नहीं मिला हुआ, कई बार पुरुषों में इतना मेल जो होता है या प्रैक्टिकल इसलिए बता रहे हैं कि आपको थ्योरी समझ नहीं आएगी, नहीं मेल ईगो इतना ज्यादा होता है कि 5-5 दिन तक घर में मुंह बना के रहते हो, क्योंकि एक ईगो होता है कि ना तो मैं पैसे देता हूं तो बस मेरी बात चलनी चाहिए, 5-5, 6-6 दिन जो होता है घर में समस्या रहती है, क्योंकि कम से कम हम 20 साल से भक्तों को देख रहे हैं और आधे से ज्यादा भक्तों में समस्या हमने देखी, 20 साल से देख रहे हैं और आधे से ज्यादा में समस्या ये होती है, 5-5, 6-6 दिन मुंह बना हुआ। अच्छा पूछो क्या ये यज्ञ रूपी कर्म हो रहा है आपका, क्या कहीं यज्ञ चल रहा है आहुति डाल रहे मुंह बना के बैठे, अरे मुंह बनाना तो छोड़ो मन में संकल्प भी आया कि मेरा मुंह बन जाए तो ही कर्म बंधन है, बनाना तो छोड़ो 6-6 दिन तो आपने तो भगवत सत्ता कर दिया इसके ऊपर, एक दिन शेष रह गया वो भी पूरा कर लो, नाराज सबका, नाराज सबका का दंड इतना है कि एक और हिमालय खड़ा हो जाएगा धर्म बंधनों का, इतना अहंकार। एक क्षण भी नहीं आना चाहिए कि मैं नाराज हूं, क्योंकि मुझे नाराज तब होते जो आपको किसी से कुछ चाहिए, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, तुम मेरे को जूते भी मार दो तो मैं दुखी नहीं हूं, निश्चयात्मक बुद्धि होनी चाहिए, मुझे खाना भी मत दो। जब तक भोग इच्छा है तभी तक जीने की इच्छा है और भय भी रहेगा। क्यों भय क्यों है आपने? क्योंकि आपने भोग इच्छा है, भोग इच्छा है इसलिए आप जीना चाहते हो। जैसे हमें भोग इच्छा है, हमें काय को जीना है, हमें कोई लंडन वंडन तो देखना नहीं है, हमें खाना पीना तो कुछ है नहीं, जंगलों के गद्दे और फॉरन तो हमें घूमना नहीं है, तो हमें काय को, हमें क्यों काय को जीना, क्या क्यों जीना, क्या क्या करना है, मार दोगे आध्यात्मिक जगत ले जाओ ले जाओ, नहीं तो एक जन्म हो दोगे, फिर भी हम यही करें। देखिए अनंत जन्मों के कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए जन्म मिला है, ध्यान दें, अनंत जन्मों के कर्म बंधन हमारे पे हैं, उन सबसे छुटकारा पाने के लिए यह मानव जन्म मिला है, उसका दुरुपयोग मत करें, कर्म फलों में क्रियाओं में आसक्त मत हो, कर्म में और कर्म फल में ममता आसक्ति कर बैठते हैं, ममता आसक्ति होती है, इससे क्या होता है, नया बंधन बनता है जब हम ममता और आसक्ति से कार्य करते हैं, कामना से नया बंधन बनता है और अनंत जन्मों के नर्क भोगने और कर्म बंधन भोगने की भूमिका बन जाती है। ये मानव जीवन अंतिम जन्म है और आदि जन्म है। अंतिम जन्म काहे को है कि अगर यज्ञ करोगे तो कभी दोबारा जन्म नहीं होगा, और आदि जन्म काहे को है, आदि जन्म मतलब ये सारे जन्मों का आदि है, बिगनिंग है, यहीं से सब कुछ होगा। कुत्ते बनोगे तो मनुष्य जन्म की वजह से बनोगे, कीड़े बनोगे, मकोड़े बनोगे, कितने लोग होते हैं मैं घर से आसक्त होते हैं, उसके बाद वो चूहा बनते हैं अपने घर में, मैं घर की रक्षा करूंगा, चूहा बन, जो आसक्त होते हैं ऐसे ही होता है। जब हम भगवत प्रीतिया कर्म करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो उद्देश्य रहित होता है कर्म, वो केवल कामना रहित होता है, उद्देश्य भगवत प्रीति है, कर्म निरंतर करना है, उत्साहपूर्वक करना है, एकदम निरंतर कर्म करना है। आप देखो बद्ध जीवन में किसी भी चीज में कंफर्टेबल होना, अगर बद्ध जीवन में वो सारे पाप कर्म, किसी भी चीज में कंफर्टेबल होना वो पाप करना है, क्योंकि कंफर्टेबल आप अपने लिए कार्य करने में ही होते हो, समझ रहे हो, परिपक्वता है तो अलग बात है, और वो गुरु जी के सामने आप कंफर्टेबल नहीं रह सकते, क्योंकि वो आपको कोई चीज अपने लिए मानने नहीं देंगे, अपना मानने नहीं देंगे, भगवान को सारथी बनाओगे तो आपसे वो काम करवाएंगे जो आप नहीं करना चाहते, वो कह रहे हैं मैं किसी को नहीं मारूंगा, कह सबको मार, अगर मैं किसी से ममता नहीं छोड़ूंगा, गुरु जी कह रहे हैं सबसे छोड़ो, भगवान को या गुरु को सारथी बनाया तो आपसे सारे वही काम करवाएंगे जिसमें आप अनकंफर्टेबल हो, सारे आप और हर चीज में अनकंफर्टेबल हो गया, क्यों, क्योंकि आपको कंफर्ट सिर्फ यही है कि आप घर में और ऑफिस में कैसे रहो, बस अच्छे से यही करते रहो, इसी में आपको कंफर्ट है, इसके अलावा आपको हर चीज में अनकंफर्ट होना भी चाहिए, अभ्यास जो गलत है, और सारथी भगवान ने कोई गुरु को बनाने का मतलब है वो यही काम करवाएंगे, अपने लिए थोड़ा करवा रहे हैं, आपके अलावा देखो उन्हें क्या मिल जाएगा, तो भगवान से कुछ नहीं चाहिए आपसे, आपसे क्या चाहिए होगा, आपके पता नहीं बच्चे चाहिए होंगे उनको, जो आपके लिए स्वयं के लिए झंझट है इतना बड़ा। यज्ञ शिष्टा शिना संतो मुच्यंते सर्व केलबशे, कोई भी कामना उत्पन्न होती है ना वो अपने अंदर अभाव कमी देखने से उत्पन्न होती है, कामना कि ऐसा हो घर में ऐसा हो, या पति ऐसा करे, या बच्चे करें, या मेरे को लड्डू खाना है, पिज्जा खाना है, जो भी है, ये इसलिए होती है क्योंकि हम अपने अंदर अभाव देखते हैं, कमी देखते हैं, आप ये समझो कि मैं सहज सुख राशि हूं, मुझमें कमी हो ही नहीं सकती, ना अभावो विद्यते सतः, गीता बोल रही है, ना अभावो विद्यते सतः, जो सत वस्तु है चिन्मय वस्तु है उसमें अभाव हो ही नहीं सकता। अब अच्छा ये बता दो आप जड़ों के चेतन, हाँ तो आपने अभाव नहीं हो सकता अगर भगवान की बात मानते हैं, ना अभावो विद्यते सतः, सत हो क्या सत हो, सत हो आप, सत हो तो आपने अभाव कमी हो ही नहीं सकती, आपको जिस क्षण कमी लगती है वो आपका भ्रम एक उत्पन्न हो गया, आपको भूल से किसी को अपना मानते हो, भूल से आप कुछ चाहते हो, आप सहज सुख राशि हो तो कुछ नहीं चाहिए। ये पचनते आत्म कारणा, गीता भवन सब बोल रहे हैं, अपने लिए कुछ भी चाहना, कामना, ममता, आसक्ति, किसी को भी अपना कहना, ये आत्म कारणा है। अपने ये पचनते आत्म कारणा, वो सिर्फ पाप भोग रहा है। अपने लिए कुछ भी सोचना, करना, किसी को अपना मानना, किसी बात में सुख मानना, किसी बात में हर्षित होना, मैं सुखी हूं, तो नई कार लिए, हो गया तुम्हारा कार, कार से सुखी हो गए, आईआईटी में बच्चा पढ़ गया सुखी हो गए, वो अब वही उसी से दुख, उसी से सुख था 2 साल में, अब उससे क्या, किसे अपना मानना। हर्षित हो रहे हो तो प्रॉब्लम है, दुखी हो रहे हो तो भी गलत है ना। हर्षित हो वो अपने कर्मों के अनुसार जो है वैसे ही करेगा, उसे गोस्वामी का जीवन जीना हो तो वो भी जीता, कुछ नहीं कर सकते थे, तो अगर असुर का जीवन जीना हो वो भी जाए, वो भी कुछ नहीं कर सकते। सुखी दुखी मत हो, सुखी हो या दुखी कर्म बंधन बन गया। हर्षित होना और दुखित होना दोनों एक ही है। बात संसार के छोटे से छोटे अंश शरीर को भी अपना मानना या अपने लिए मानना, ये महान पाप है। संसार का ही तो अंश है ना, हमारा अंश तो नहीं है शरीर, हम तो भगवान के अंश हैं, हम भगवान के अंश हैं, शरीर संसार का अंश है। संसार का बहुत छोटा सा अंश है, बहुत छोटा अंश, इसको अपना मानते हैं तो ये महान पाप का कारण होता है। जब हम अपने लिए कर्म करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, तो अपने कर्तव्य से च्युत हो जाते हैं। कर्तव्य क्या है हमारा? यज्ञ अर्थात कर्म। हमारा कर्तव्य क्या है कि अनन्य चिंतयंतो माम, सुना हुआ श्लोक, मन मना भव मत भक्तो, अनन्य भाव, ये मेरा कर्तव्य है एकमात्र। हमें सुख का मूल कारण निष्कामता को मानना चाहिए, मूल कारण सकामता हमारे जीवन से। सकामता मतलब अपने लिए कुछ करना, अपने लिए कुछ चाहना। निष्कामता नंबर वन प्रायोरिटी एंड ओनली प्रायोरिटी, जब तक नहीं होगी तब तक कुछ अनुभव नहीं होने वाला। आज ये सोचो, हम जप करते हैं, गायत्री करते हैं और पूरा दिन संसार का काम करते हैं, हमें कोई भी बात याद आती है जप में या गायत्री में या अध्ययन की, पूरा दिन कुछ याद नहीं आता। और जब जप या गायत्री करते हैं उसमें अपने बच्चे, परिवार, मुझे इसने ये कह दिया, सब कुछ याद आता है। जबकि होना भी, चूंकि हम करते हैं इसको ड्यूटी के रूप में, उसमें पूर्ण ममत्व से, आसक्ति से सारे कार्यों को, होना इसका ठीक ऑपोजिट चाहिए कि जब पूरा दिन बिजनेस में बैठे हो, पूरे अध्ययन याद आ रहा हो, लेक्चर याद आ रहा हो, रूप याद आ रहा हो, लीला याद आ रही हो, पूरा दिन किचन में बैठे हाथ जल गया कि मेरे को लीला याद आ रही है, कुकिंग कर रही थी और ये मेरी लीला याद आ रही है, बिजनेस में गलत हिसाब कर दिया, 1 रुपया गलत नहीं होगा कभी, एकदम सही हिसाब करेंगे। और जब भी हमारे को जो याद आ रहा है, समझ लो वो आपने, आपकी उसमें ममता है, आपको जो, अगर आपको चीज याद आ रही है तो उसमें उतनी ज्यादा ममता आपने डाली हुई है, आसक्ति आपने डाली है, आपने कामनाएं डाली हुई है, इसने मुझे ये क्यों कहा, ये सबसे बड़ी बात याद आती है। कभी नहीं भूलते हैं जब उस बात को, इसने मुझे ये क्यों कहा, क्योंकि इसने हमने अपनी आसक्ति ममता सब डाली। अगर करना है तो हमारे को बिजनेस जो कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, दास दास अनुदास की भावना से सेवा रूप में नहीं मानेंगे जब तक, जैसे भूत शुद्धि करनी होती है डेटी वर्षी पहले, भूत शुद्धि बिजनेस से पहले भी करनी चाहिए, मैं दास दास अनुदास हूं, ना विप्रो ना ग्राहपति, महाप्रभु ने बोला नहीं ना हम विप्रो, मैं काम धंधे वाला नहीं, पहला शब्द ये बोला ना हम विप्रो, ये नहीं बोला कुछ, ना मैं काम धंधे वाला नहीं हूं, ना ग्रहपति, ग्रह का पति, मैं एक शुद्ध जीव हूं, ग्रहपति शब्द देखिए क्या बोला, ग्रह का पति, तुम कुछ नहीं हो, अधिकार जमाने की मशीन नहीं हो तुम। सुख का मूल कारण है निष्कामता, सकामता कैसे जाएगी, निष्कामता से, निष्कामता से ही जाएगी। कर्म तब होता है जब कुछ ना कुछ पाने की इच्छा होती है, कुछ भी पाने की इच्छा होती है तो कर्म होता है, कर्म बंधन होता है। आपे कुछ भी पाने की इच्छा है तो वो कर्म बंधन है। और जो भक्त होते हैं, जो कर्म बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, उनका किसी भी कर्तव्य से, किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहता। हमारे को साधकों को केवल अपना सम्मान जड़ता से विच्छेद करना है, मन बुद्धि अहंकार से, सबसे ये हमें मिले हुए हैं, मन बुद्धि अहंकार इंद्रिय इनसे विच्छेद करना है। तत्व तो ज्यो का तो विद्यमान है ही, भगवान भी विद्यमान है, भक्ति भी विद्यमान है, गुरु भी विद्यमान है, पर हमें कामना और ममता को हटाएं, संबंध विच्छेद करें तो सब कुछ प्राप्ति है। और सबसे मजे की बात ना, सोचो कितना मुश्किल है विच्छेद करना, मुश्किल को छोड़ो ना, ये मुश्किल है आसान, क्योंकि विच्छेद तो तब करोगे ना जब जुड़ा हुआ होगा, जुड़ा हुआ ही नहीं है। ये भी हमने माना हुआ कि हम जुड़े हुए हैं, बताओ किसी जड़ चीज से कोई आत्मा कभी जुड़ सकती है? मन बुद्धि इंद्रियां ये सब जड़ हैं, इनसे क्या हम कभी जुड़ सकते हैं? ना शरीर स्थिति कौनते हैं, ना करोती ना लिप्यते, ना करता है ना लिप्त होता है किसी भी कार्य से। तो संबंध भी छेद भी करना, संबंध भी छेद है, समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि पति पत्नी किसी को नहीं मानना है ही नहीं, ये थोड़ा कि हो और नहीं मानना, हो ही नहीं। और मन बुद्धि एंकर अपने आपको नहीं मानना मतलब वो मानना नहीं है, ऐसा नहीं है। आपका नेचुरल संबंध भी छेद है मन बुद्धि अहंकार से, भाई इस बात को स्वीकार कर लेना, नेचुरल आपका भी छेद है संबंध। जो हमारे को भगवत भक्ति वास्तव में जो मुख्य बाधा है वो इस संसार की सुख लोलुपता है, बस संसार का ये वाला सुख मिल जाए, ये वाला सुख, संसार की सुख लोलुपता। मानव जीवन केवल यज्ञ अथवा कर्मणों, याद रखें बार बार, जब मानव जीवन दिया जाता है तो शरीर धन जमीन मकान सब सामग्री मिलती है, और जब यहां से जाते हैं तो सब ले ली जाती है, छूट जाती है। तो इससे सिद्ध होता है कि हमें मिली है, हमारी नहीं है, हमें मिली है, हमारे से ले ली जाएगी। और जैसे मनुष्य ध्यान दे, जैसे मनुष्य कार्यालय में जाता है ऑफिस में, तो ऐसे मान लो भारत पेट्रोलियम का कोई दफ्तर है, वो सब मेज देंगे, कुर्सी देंगे, फोन देंगे, कॉपी देंगे, पेंसिल देंगे, बहुत कुछ। किस लिए देंगे भाई? कि आप ऑफिस का काम करोगे, ये नहीं कि अपने घर लेके चले जाओगे, अपने भाई को दे दोगे। ऑफिस के लिए मैं काम करने गए तो उन्हीं के कार्य के लिए दिया जा रहा है। उसी प्रकार से भगवान का यज्ञशाला है ये संसार मनुष्यों के लिए, तो यज्ञ के लिए सब कुछ दिया गया, एक एक चीज हर क्षण। तो घर ले जाने के लिए अपने लिए नहीं है, तो जैसे ऑफिस में हमको धन मिलता है वेतन के लिए, हम क्या करते हैं? उत्साह से और तत्परता से काम करते हैं। उसी प्रकार से भक्ति का भी कैसे? स्पॉन्टेनियस रेडीनेस फॉर इंटेंस एक्शन, स्पॉन्टेनियस रेडीनेस, हाँ, हर समय फॉर इंटेंस एक्शन। कर्म योग के लिए मिला है, कर्म योग हमेशा कर्म करते रहे शरीर, तो योग परमात्मा से हमेशा भगवान से, उनकी प्रीतियार्थ कर रहा हूं। यज्ञ अर्थात कर्मण, प्रीतियार्थात कर्मण, राधा अर्थात कर्मण, अन्यत्र कर्म बंधन। सारे सामान्य मानव कर्म तो सब करते हैं, मतलब जो अपने लिए कुछ भी कर रहा है कर्म ही कर रहा है ना, मतलब कर्म बंधन कर रहा है। तो जो भक्त है वो सारे कर्म बड़े ध्यान से बड़े सावधानी से करता है, किसी कर्म में मेरी आयोटा भी आसक्ति ना और ममता ना, ये बात निष्कर्ष ये समझ लो। हमारे को चाहिए आनंद, रुचि किसकी है हमारी, हमारे को आवश्यकता क्या है हमारी? अविनाशी की। और रुचि किसमें है? नाशवान है। बताओ कैसे मिलेगा? व्यक्ति नाशवान, वस्तु नाशवान, और उसमें हमारी रुचि है। और आवश्यकता भूख किस बात की है? अविनाशी की। रुचि किसमें है? नाशवान में, समझ रहे? रुचि नाशवान में, भूख है कि रूपे पाई गो सेवा मोई दुराचार। कैसे सेवा मिलेगी मुझ दुराचारी को? ये क्रिमिनल एक्ट है, किसी को भी अपना मान, क्रिमिनल एक्ट है, बहुत बड़ा क्रिमिनल एक्ट है। किसी व्यक्ति को अपना माना या अपने लिए मानना, लीव एवरीथिंग असाइड, कम टू द मेन पॉइंट। एक निर्णायक अपना गोल बनाना है अपने स्वयं का, कि हाउ माई लाइफ शुड, मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, ठीक है, मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, एक लक्ष्य बनाना है। पहला पॉइंट है कि केवल यज्ञ अर्थात कर्मण होना चाहिए, यज्ञ अर्थात कर्मण।
और एक और बात, भक्ति कर्म बंधन से जो मुक्त होना था वो फुल टाइम ही हो सकते हैं। यज्ञ था कर्म तो फुल टाइम ही होता है ना, जो फुल टाइम नहीं है वो भक्त वक्त कुछ भी नहीं। फुल टाइम का मतलब नहीं है कि आपको बाल हटाने हैं या दाढ़ी रखनी है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो कर रहे हो करो, फुल टाइम का मतलब होता है मन से केवल भगवत प्रीति आदि कर्म करना। पहले हमें फुल टाइम होना, ये पहला विजुलाइज करो हाउ माई लाइफ शुड बी। नंबर वन फुल टाइम, समय से सोना है, कुडलिंग फुडलिंग को आग लगा दो, चूल्हे में डाल दो फाइनली, और समय से सो। और जो व्यक्ति समय से सो के समय से नहीं उठेगा वो कोई भी भक्ति नहीं कर सकता। वो उसके लिए सारे प्रवचन बेकार हैं, सारे डिस्कशंस बेकार हैं, सब कुछ बेकार है। आपको सुबह उठना है टाइम से और रात को टाइम से सोना ही। नहीं कर सकते तो आप कोई भक्ति भक्ति कुछ नहीं कर सकते। और सारे जो मेरे कार्य होने चाहिए ममता से रहित होने चाहिए। भगवान गीता में कितनी जगह बोल रहे हैं ममता रहित हो, ममता रहित हो। ममता रहित होने के लिए दर्जनों श्लोक भगवान ने बोले। आप देखो घर जाके पढ़िएगा 4:19, काम संकल्प वर्जिता। काम संकल्प वर्जिता, कोई काम नहीं कोई संकल्प नहीं, वर्जित। कोई भी कार्य करो कामना से मत करो कि मुझे यह मिल जाएगा, क्योंकि जब आप कुछ भी कामना से अगर मुझे मिल जाएगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपके मन में जैसे ही अगर मुझे ये मिल जाएगा तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। काम संकल्प त्यक्त्वा कर्म फल फलासंगम, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम। कर्म फल आसक्ति से, फलासक्ति छोड़ो, चाहे अच्छा मिल जाए बुरा मिल जाए, हम यज्ञ कर रहे हैं, चाहे सफल हो चाहे असफल हो, कर दो बस। निराशी बिना आशा से करो, ये भगवान के शब्द हैं। अच्छा श्लोक नंबर बताएं, 4:19, 4:20, 4:21। निराशी आशा से रहित होके करो। समा सिद्धो व असिद्धो चा, 4:22। कि सिद्धि हो या असिद्धि हो, फेलियर हो या सक्सेस हो, उसमें सम रहो। 4:23, सब एक साथ लाइन में है। गत संगस्य संग त्याग के करो, असंगो यम पुरुषः। हम असंग है, हमारा किसी से संग नहीं है, किसी व्यक्ति से संग नहीं, किसी वस्तु से नहीं, अपने मन से भी नहीं, बुद्धि से भी। जिस क्षण आप किसी संग करते हो मन से या बुद्धि से, आप कर्म बंधन में आ जाते हो। जड़ है ना, जड़ता का संग ही कर्म बंधन है। हम क्या है, असंगो यम, हमारा संग नहीं है किसी से। आप संग करोगे तो संग कर्म बंधन का ही तो हो रहा है फिर। जड़ता से संग मतलब कर्म बंधन का संग। गत संगस्य, और पता नहीं कहां लिखा है गता व्यथा, ये भी शब्द है गीता में, कि किसी बात में ना दुखी मत हो। व्यथा एक क्यों है आदत है ना, तो दुखी होने का मतलब है कि कर्म बंधन। ये यज्ञ का बात को नहीं है ना दुखी होना, त्रिप करना, ऐसा क्यों ऐसा क्यों। त्रिप मत करो, कंप्लेंट मत करो कभी, थोड़ा सा खाना मिल जाए बस, ये मिल गया आपका श्लोक। आत्मनेव च संतुष्टस्य, आत्मनेव च संतुष्टस् तस्यम कार्यम न विद्यते। जो आत्मा में संतुष्ट है उसको कोई कार्य नहीं, कोई ड्यूटी नहीं है। वृंदावन महिमा में बताया गया है, 1:68 है या तो याद नहीं है, ना कुरु ना वत, ये है श्लोक के प्रथम अक्षर, ना कुरु ना वत, ऐसा है कुछ। पढ़िएगा अभी हम बता देंगे, देखिए समय नहीं है ना इतने सारे, तो ना कुरु ना वत, ना तो कोई कार्य करने को है ना कोई ड्यूटी है आपकी, ना वत समझो। तस्म कार्य ना विद्यते, एक रस में रहो, चार रसों में नहीं, वात्सल्य माधुर्य जब चाह अधुल्य माधुर्य जब चाह वात्सल्य जब चाह डबल वात्सल्य डबल जब चाह साखे जब चाह दास से बन गए बना लिया किसी को दास, ये मत करो। एक रस में रहो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक, ये किसी को समझ नहीं आएगा। 3:18 इसकी आखिरी पंक्ति है, ना चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रयः। इसका मतलब हम बता दें नहीं तो मुश्किल है थोड़ा। ना चास्य सर्वभूतेषु, कितने भी भूतेषु मतलब प्राणी लोग, सर्वभूतेषु सारे लोग जो हैं उसमें कश्चित् अर्थ व्यपाश्रयः, उससे मेरे को किसी भी प्रकार से कुछ नहीं चाहिए होता। कश्यप अर्थ, मुझे किसी से भी अर्थ कुछ नहीं चाहिए। सर्वभूतेषु, अपने अपने लिए मुझे किसी भी मनुष्य से कुछ, कश्यप अर्थ व्यपाश्रया, उनका आशय मुझे कुछ नहीं चाहिए उनसे। ये गीता का 4:18 पढ़िएगा, अगला पढ़ लीजिए 3:18-3:19। तस्माद् असक्तः सततम् कार्यम् कर्म समाचरात्। सततम् कार्यम्, तस्माद् असक्तः, आसक्ति रहित होके सततम् कार्यम्, सारे कार्य हमेशा कार्य करो आसक्ति रहित होके। असक्तो ह्य अचरण कर्म प्राप्नोति पुरुषः, जो अनासक्त होके आसक्ति रहित होके कर्म करता है प्राप्नोति पुरुषः, वो परम पुरुष को प्राप्त हो। पढ़िएगा, है तो बहुत कुछ, हम कैसे बताएं, ये सब सोचो तो आपको आगे बताएगा, ये नंबर ही कहीं नहीं आएगा। प्रकृति ये बड़ा ये इसके पूजे इसके ऊपर बहुत सेशंस चाहिए, पर हम एक मिनट में बताने की कोशिश। प्रकृति क्रियामाणानी गुणे कर्माणी सर्वशः अहंकार विगुण आत्मा करता हम इति मन्यते। इसका मतलब ये है, मैं आत्मा हूं, हमारी भाषा में शरीर के अंदर रहता हूं, मैं कुछ भी नहीं करता हूं, और हमें हमेशा लगता है मैं खाता हूं, मैं बैठता हूं, मैं उठता हूं, मैं सोता हूं, मैं ना एक किंचित करोमी इति शरीर स्थपि कौंत्या ना करोती ना लिप्यते, ना एक किंचित करोमी इति अहंकार विमूढ आत्मा करता हम इति मन्यते। जो विमूढ़ व्यक्ति है, मूढ़ है, मूर्ख है, वो मानते कि मैं करता हूं, इसलिए करता मानते तो भोक्ता मानना पड़ेगा अपने आप को, कि मैं भोगता हूं, अच्छा भोजन खा सकता हूं, क्योंकि आप भोजन खा सकते हो तभी तो अच्छा खाओगे। जब भी हम मानते हैं कि ये खाना है, तो पहले हम मानते हैं कि मैं खा सकता हूं, उसका एक और भ्रम, मैं अच्छा भोजन खाऊंगा, उससे सुखी हो जाऊंगा। इसको कहते हैं करता हम इति मन्यते, कि मैं कर सकता हूं, मैं करता हूं। आत्मा शरीर में रहते हुए हमेशा अकर्ता है, कोई भी कार्य नहीं करती, केवल दृष्टा है, केवल देखती है और कुछ भी नहीं होता, दृष्टा है केवल। आत्मा हमेशा अकर्ता है, हम कुछ नहीं करते, हम भोक्ता नहीं है, भोक्ता हो नहीं सकते, संभव नहीं है। हम घर के अंदर बैठे हैं, घर के बाहर लीपा पोती हो रही है, कुछ नहीं करते हम। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, ये सब कार्य प्रकृति में हो रहे हैं, प्रकृति में, कि प्रकृति का शरीर है, इसी को फल मिलेगा, इसी को मिलेगा, इससे जाएगा। आत्मा को कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं जा रहा, समझो। सोचिए, असत मान, ये जो असत मान्यता है, जो सत नहीं है, सच नहीं है, वो इतनी दृढ़ मानी हुई है कि ये मेरा, ये मेरा है। तो जो सत मान्यता वो कितनी दृढ़ है असली में, सोचो, ये तो असत्य है, भूल है, इसको दृढ़ माना हुआ है। तो सत मान्यता, मैं तो हूं ही ना भगवान का, इसमें कोई हमारे कोई प्रूफ थोड़ा ना करना है किसी से कुछ। और ये क्लियर बोल रहे हैं अगले श्लोक में, 3:28 पढ़िएगा, 3:27-3:28। तत्वित महाभाव गुण कर्म विभाग गुणा गुणेशु वर्तनता इति मतवाना सज्जते। सब पता है इंटेलिजेंट व्यक्ति को कि गुणा गुणेशु वर्तनता, शरीर के साथ प्रकृति के शरीर के साथ प्रकृति के पदार्थ जुड़ रहे हैं, बिछुड़ रहे हैं। ध्यान दो, प्रकृति के शरीर के साथ प्रकृति के पदार्थ मिल रहे हैं, बिछुड़ रहे हैं, मैं कुछ नहीं करता। क्या बोल है, गुणा गुणेशु वर्तनता इतनी मतवा न सज्जते, जो बुद्धिमान है इसमें लिप्त नहीं होता कि मैंने किया, मेरा बाप मर गया, मेरी मां नहीं है, ये कुछ नहीं है। ना तुम्हारा कोई बाप मरा, ना तुम्हारी कोई मां, कुछ कोई है ही नहीं, कोई होगा कहां से। गुणा गुणेशु वर्तनता, जीना पड़ेगा इन शिव चीजों को, ये फिर हमें आपको बता रहे हैं, हमें पता से होगा नहीं, कोई जब मनन नहीं करोगे। जो व्यक्ति कोई भी प्रवचन सुन ले, उससे होगा कुछ नहीं, अगर वो मनन नहीं करेगा दिन रात उस पर। मनन कैसे करता है व्यक्ति, वो मानता है कि इसके बिना मेरी गति नहीं है। जैसे पानी पे मनन होता है या प्यास होती है, पानी 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 पानी, नहीं होगा मेरा इसके बिना, उसलिए उस हद तक का मनन, हाँ इसके बिना काम नहीं, इसके बिना काम नहीं। जब मनन न सही होगा तो अपने आप एप्लीकेशन करो। देखो गुरु जो है पानी तो दे सकता है, खाना तो दे सकता है, प्यास तो उन्हें उत्पन्न करेगा ना आपके अंदर, वो कैसे करेगा। भूख और प्यास तो खुद लानी पड़ेगी ना, हम आपको मान लो दे दें ये ड्रिंक पी लो, ये भोजन कर लो, आपको भूख प्यास ही, हम कोई क्या करेगा। तो मनन करें कि यही मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरे को निष्काम होना है। ये बहुत अच्छा श्लोक है, ये बहुत समझना। तीन पीस मई सर्वाणी कर्माणी सन्यस्य अध्यात्म चेतस निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा। देखो जो निष्काम हो गए ना, ये श्लोक आपको बोलना शुरू कर रहे हैं। हम कोई संस्कृत के स्कूल में तो पढ़े नहीं, ये सब बोलते हैं श्लोक, बात करते हैं। मई सर्वाणी कर्माणी, सारे कर्म मुझे अर्पण करो, सारे कर्म सुबह से रात तक के, ऑफिस वाले भी और हाउस वाइफ वाले भी। मई सर्वाणी कर्माणी सन्यास, अच्छा सोचो चेतना कैसी होनी चाहिए, मेरी हाउस वाइफ की या सन की चेतना होनी चाहिए, बच्चे की, मैं अच्छा अच्छा पुत्र हूं। अध्यात्म चेतसा, भगवान बोल रहे सन्यास से अध्यात्म, आध्यात्मिक चेतना से सोचो, जो भी काम सोचो आध्यात्मिक, स्त्री की चेतना से नहीं, पुरुष की चेतना से नहीं, सन्यास अध्यात्म चेतसा। अगला शब्द, ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है 33। निराशी हो मतलब किसी से आशा मत रखो, आशा ही नैराश्य परम सुखम, जिसमें कोई आशा नहीं हो परम सुपरम सुखी है, सहज सुख राशि हो ना। निराशी निर्ममो, बिना ममता, निर्ममो तक ममता रहित हो, पूर्ण ममता रहित, निर्ममो निराशी भूतवा युद्ध से विगत चो रहा, ये आलस मत करो, विगत चो रहा। कभी ऐसे बोलते हैं मेरे को 16 माला कर रीडिंग करके बोलते जैसे खाना खाने में स्पॉन्टेनियस रेडीनेस फॉर इंटेक्स एक्शन होता है, वैसे ही सभी चार कार्यों क्रियाओं में होना चाहिए, खासकर सेवा में। अच्छा एक बहुत महत्वपूर्ण बात तो बताना ही बोल रहे कि देखो जब तक चित्त मलिन है, माने किसी को अपना मानते हो, तो सारे भगवत भक्ति की क्रियाओं में सीधा पूरी तरह नहीं डूब सकते। इसका एक ही समाधान है, एक ही, अपने आप को निष्काम कर्म योग में, निष्काम सेवा में कुछ साल लगातार नॉन स्टॉप अगर नहीं डुबाएंगे तपाएंगे तो भूल जाओ कि हम सततम भगवान का स्मरण कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, कुछ भी यज्ञाधान कर्म नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। निष्काम सेवा एकमात्र हमारा रेस्क्यू है, ये इतनी महत्वपूर्ण बात स्किप हो गई बोलने। निष्काम जब तक कर्म नहीं करेंगे हमारा चित्त साफ नहीं होगा, चित्त साफ हुए बिना आप औरों को अपना मानोगे, अपने लिए मानोगे, चित्त साफ केवल निष्काम नंब। अच्छा सारे सार एक बात है, निष्काम जीवन जीना, निष्काम सेवा करना हमारे आने वाले कई सालों का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। निष्काम सेवा करें और रात को जल्दी सो के सुबह जल्दी उठे, ये क्रक्स है निष्काम सेवा। ये तो हर सेवा में देखें पूर्ण निष्कामता है कि नहीं, वो हर समय निष्काम सेवा करते रहे कंटिन्यू, बच्चों से भी निष्काम रहे, निर्ममो निराशी निर्ममो। भगवान बोल रहे हैं ये मैं मतम इदम, 3:31 अगला पढ़ लो लाइन में सब, ये मैं मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावंतो अनसूयंतो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। तो मतलब यह है ये मैं मतम इदम, ये जो मेरा मत है, भगवान कह रहे हैं कि निर्ममो हो, निराशी हो, आलस मत करो, नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः, ये नित्य मानव को करना चाहिए पर्व, नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः, क्लियर है सर? ये मानव को नित्य करना चाहिए, क्या ये मैं मतम इदम, क्या मतम इदम पिछला श्लोक है ना, 3:30 मई सर्वाणी कर्माणी, ये पांचवें अध्याय में भी 11वां है, आपको पढ़ाए साथ में तो कितना अच्छा लगता है गीता पढ़ना, कभी तीसरा अध्याय कभी पांचवा अध्याय। बालक होते हैं वो कहते हैं हम मंजरी भाव में आ गए, हमें तो भगवत गीता से ऊपर है, बच्चे 10 साल बाद अगर एबीसीडी की समझ आ जाएगी अपने आप को भाग्यशाली समझना, भगवत गीता पूरी नहीं बोले समझ आएगी, बहुत जल्दी एबीसीडी 10 साल बाद भी समझ आ जाए। कोई बालक बताते हैं अभी पैदा हुए 10-15 साल हुए हैं, बोलते हैं गीता से ये देखो 33 मई सर्वाणी कर्माणी संन्यास्य अध्यात्म चेतसा। अब आ जाओ 5-10 ब्रह्मन्याय अध्यानी कर्माणी संगम त्यक्त्वा करोति यः। ब्रह्मणि आधाय, ब्रह्मणि मतलब भगवान के आधाय कर्माणी संगम त्यक्त्वा करोति सः, जो भगवान के सारे कर्म करते संगम त्यक्त्वा, संग को त्याग करके, लिप्यते न सा पापेन, वो पाप में लिप्त नहीं होता। जो सारे कर्म भगवान के लिए करते, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः, डिटैच होके आसक्ति रहित होकर करता है संगम त्यक्त्वा करोति यः, लिप्यते न सा पापेन। पद्म पत्रम इवांभसा, जैसे पानी में रहता हुआ कमल का फूल लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार से वो व्यक्ति जो निरंतर क्या करता है मई सर्वाणी कर्माणि, वो लिप्यते न सा पापेन, जो वही व्यक्ति पापों में कर्म बंधन में लिप्त नहीं होगा जो मई सर्वाणी कर्माणि। ये भगवान के शब्द हैं, निराशी निरममो हमारे शब्द तो नहीं है, अनन्य ममता विष्णु ये भी वेद वाक्य हैं, जननी जनक बंधु सुधा भगवान राम के वाक्य हैं। अगला श्लोक ये सबसे हमने मायापुर में भी कहा था, भूल जाते हैं, ये कर्मयोग का सिद्धांत है, कायन मनसा बुद्धिया केवल इंद्रिय अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कायन मनसा बुद्धिया, चाहे शरीर से हो, मनसा मन से, बुद्धिया बुद्धि से, केवल इंद्रिय अपि इंद्रियों से, योगिनः कर्म कुर्वन्ति भक्त जो कर्म करता है संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। बिजनेस जाओ आत्मशुद्धि के लिए, पत्नी से बात कर रहे हो आत्मशुद्धि के लिए, गंध मत करो अपने आप को, तू मेरी है देखो मेरी बात माननी होगी, ये सब गंध मत मचाओ, संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। बच्चे ना निचोड़े अपने पेरेंट्स को कि हाँ आपको ये बनाना चाहिए हमारे लिए, आपको पता नहीं हमको ये खाना था हम इतने बजे आए, अरे बाबा वो यज्ञ के लिए सामग्री है आपकी मम्मी, आप मत उन्हें बोलो कुछ अपने लिए। कायन मनसा बुद्धिया केवल इंद्रिय भी योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, ये बात तुम संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, संग का त्याग करके आत्मशुद्धि के लिए कार्य करें। कायन मनसा बुद्धिया योगिनः कर्म कुर्वन्ति, कितना अच्छा नहीं लग रहा आपको ये श्लोक, ऐसा है हमारे प्रीतम का हमारा प्रेम पत्र है, हमारे प्रेम है तो प्रेम पत्र लगेगा, नहीं तो हमारे को डंडे पर लग रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं क्या है, संयोगिन कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। अगला श्लोक, योक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकम्, हमारी भाषा बोले युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकम्, जो कर्म फल का त्याग करता है शांति मापनोति नैष्ठिकम्, उसको अनंत शांति मिलती है नैष्ठिक शांति में। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकम्, अयुक्त काम कारेण फले सत्व निबद्धते, काम कारण मतलब इच्छा से कोई कर्म करते हैं कामना से तो फले सत्व निबद्धते, वो बंद जाता है, सोचो इच्छा से कर्म कर रहे हैं फलो सत्व निबद्धते, युक्त कर्म फल त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकम्, कर्म फल का त्याग करके हमें कुछ नहीं चाहिए, इच्छा का त्याग करके शांतिम आपनोति नैष्ठिकम्, नैष्ठिक शांति मिलती है, नैष्ठिक शांति। और अयुक्त काम कारेण फले सत्व निबद्धते, ये तो हम अचानक आ गए फिफ्थ डे थर्ड से और सुनाए, ये हर श्लोक में यही है, सर्व कर्माणि मनसा, सारे कर्म मनसा मन से, संन्यास सास्ते सुखम वशी, जो संन्यास भाव से करता है कि मेरा कोई अपना कोई नहीं मानता, ना किसी व्यक्ति को ना व्यक्ति को ना वस्तु को, सुखम वशी, साफ शब्द बोल रहे हैं, सुखम वशी सर्व कर्माणि मनसा, जो मन से संन्यास सास्ते सुखम वशी, या कौन से चैप्टर का सुनना चाहते हो समझने के लिए? हमने थर्ड का बता दिया, फिफ्थ का, सिक्स बताएं, टू थ्री फोर बताएं, सिक्स बताएं, दोनों बता दो, हम तो आपकी सेवा कर रहे हैं। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वे अपि मुमुक्षु भी, ये जान के काम करो। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वे अपि मुमुक्षु भी, जो भी कर्म बंधन से मुक्त होना चाहते हैं वो यही जान के कर्म करते हैं। अपने मन से कर्म मत करो, मन चाही, मन चाही जितना क्षण करोगे आपकी मन चाही तो शायद पूरी हो जाए प्रारब्ध से, नहीं भी हो बट कर्म बंधन निश्चित है। कई बार सेवा में लोग होते हैं, तुम्हें पता तो है माता जी मैं अपने मन के अनुसार ही करना है, ये कौन सा निष्काम कर्म योग है भाई? मन को त्याग, जड़ता कोई तो त्यागना था, तुम सेवा कहां कर रहे हो? तुम अपने मन के अनुसार ही यहां पे भी कर रहे हो, ये जड़ता का त्याग करके सेवा करनी है। गुरु के प्लेजर के अलावा कोई भी बात है सेवा के अंदर, वो समझ लो सिर्फ पाप और दंड मिलेगा। कोई सेवा करो या कुछ भी करो, उसमें गुरु का प्लेयर नहीं है। किसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मन से ही करेगा, ठीक नहीं है। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षु भीः, किम कर्म किम अकर्मेति कव्योऽप्यत्र मोहितः, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षदे अशुभात्। क्या कर्म है क्या अकर्म है ये बड़े बड़े पंडित भी नहीं जान सकते, कवि और मित्र मोहिता। तत्ते कर्म प्रवक्षामि यद् ज्ञात्वा मोक्षते अशुभात्, इसके लिए मैं कर्म का प्रवचन कर रहा हूं, ये जान के तुम सारे अशुभों से पार हो जाओगे, समझ रहे हो? ये जान के अशुभों से पार होगे, नहीं तो ये बिना जाने इस साइंस को अशुभ में ही रहोगे। चाहे आप हवेली में रह रहे हो, आप हवेली में नहीं रह रहे, आप अशुभ में रह रहे। हम कितना बनाए, कर्मणोपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः, कर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। अच्छे से जानो क्या विकर्म है क्या कर्म है क्या सकर्म है, क्योंकि कर्म की गति बहुत गहन है। इसका पहला श्लोक ही बहुत अच्छा है, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः, स संन्यासी च योगी च न निरग्निर न च अप्रियः। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः, जो किसी भी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति का आश्रय नहीं लेता सुख के लिए, इसको कहते हैं अनाश्रित, समझ लो। अनाश्रित कर्म फलम, वो कार्य करता है अनाश्रित होके कि मुझे ये व्यक्ति से सुख नहीं चाहिए, वस्तु से नहीं चाहिए, परिस्थिति से नहीं चाहिए, क्रिया से नहीं चाहिए, अनाश्रित कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः, जो कार्य करता है। स सन्यासी, वो सन्यासी है, च योगी, वही योगी है। वो योगी नहीं है जो अग्नि नहीं जलाता, वो यज्ञ नहीं करता, से बैठा हुआ। जो अनाश्रित है, किसी के आश्रित नहीं है सुख के लिए, वो योगी है, किसी व्यक्ति वस्तु मुझे सुख कैसे मिल जाए, बस हम इसी के लिए व्यक्ति वस्तुओं को देखते रहते हैं। एक होता ना प्रे, एक वन इज रेडी टू पाउंस ऑन समवन, यू नो वी आर ऑल दैट, वी आर जस्ट रेडी टू, वी आर ऑलवेज वेटिंग टू पाउंस ऑन समवन, समबडी, समथिंग, शाही पनीर और ये मेरी औरत मेरा बच्चा, क्या वो आता है प्रसाद में गुलाब जामुन, एक और देखो ये तुम यज्ञ कर रहे हो गुलाब जामुन का, इडियट, हमें तो बहुत बुरा लगता है, पनीर देखते ही फुआरे फूल उठते हैं, व्हाट डू यू कॉल इट, इडियोटिसिटी, यू फील सो नाइस सीइंग पनीर, दिस इज नॉट गुड। ये सब अनाश्रित की टीका, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स। अच्छा एक और बात है, गीता में कई श्लोकों में पढ़ोगे सन्यासी शब्द बोला गया, कई श्लोकों में संन्यास अध्यात्म चिकित्सा न स संन्यासी चो योगी, बहुत श्लोकों में। एक बात बताओ, अगर कोई सन्यासी है तो भगवान उसको बोलेंगे तो सन्यासी बन, तो नहीं बोलेंगे, जो नहीं है उसको बोलेंगे। अच्छा क्या भगवान ये चाहते हैं सब ग्रस्त खत्म हो जाए, सब सन्यासी बन जाए डंडे वाले? ना, ये नहीं कह रहे भगवान। अरे मन से सन्यासी, ये लिखा है ना, जो अनाश्रित है वो सन्यासी है, वही सन्यासी है, वही योगी है, जो किसी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति से सुख नहीं चाहता वो सन्यासी है। आप घर रहते हैं परफेक्ट सन्यासी हो सकते हो, ये नहीं कि आप लाल कपड़े हैं और एक एप्रन डला हुआ आगे और वो डंडा ले हो, वो सन्यासी नहीं होता। आप ऐसे ही गमछे में सन्यासी हो, कैसे? अनाश्रित, अनाश्रित होना, किसी से व्यक्ति का आश्रित नहीं। सभी जीवों में, सामान्य जीवों में ये वेग होता है कुछ ना कुछ करने का, मुझे कुछ ना कुछ करना है, खाली नहीं बैठ सकते, ठीक है, मानते हैं, और अनादिकाल से ये वेग है, मानते हैं। तो डायरेक्ट भक्ति की क्रियाएं जब अध्ययन और वो पूरा समय नहीं कर सकते तो वेग तो नहीं शांत होगा, तो क्या करो, उस वेग को इस्तेमाल करो निष्काम कर्मी। अरे जब वगैरह कर लिए खाली हो गए फिर क्या करो, निष्काम सेवा करो, करो करो और हर समय करो। इसलिए हमने बोला है नंबर वन लक्ष्य निष्काम कर्म, निष्काम कर्म योग सेवा होना चाहिए आने वाले कई सालों तक, तब आगे चल के दिन रात श्रवण कीर्तन और मनन में डूबे रहो। ऐसे नहीं होगा, ना किसी का हुआ है ना किसी का होगा। साईं देखिए, हम जो आपको बता रहे हैं ना, मर जाएं या जी जाएं, हम आपको बहुत चीज दे के जा रहे हैं, दे रहे हैं कि जो त्रिकाल सत्य है, हम नहीं है तो भी आपको निष्काम कर्म सेवा करनी है, हम हैं तो भी आप, नहीं तो चित्त शुद्धि नहीं होगी, नहीं लग सकते। हम आपको ये कर्म तत्व का आज वो सब बातें बता के जाना चाहते हैं कि आपके मन में कुछ रह ना जाए। छह का छह बहुत है। हाँ आगे मिल गया, दिस इज माई अनाथ मनस्तु शत्रुत्वे वर्तित आत्मेव शत्रुवत। अब किसी को क्या मिलेगा ईश्वर में, मैं तो बहुत कुछ मिला। छह का छह, जो किसी भी अनात्म वस्तु को आत्म अपनी मानता है, अनात्म मतलब जड़, जड़ मतलब व्यक्ति वस्तु परिस्थिति को अपना मानता है, वो या उसकी आवश्यकता के जीवन में समझता है, वो अपने साथ ही शत्रुवत व्यवहार कर रहा है। ये भगवान के शब्द रहे गीता में, शत्रुवत शत्रुत्व, एक लाइन में दो बार शत्रु शब्द बोला है भगवान, मन को बता रहे हैं, अपनी माइंडसेट को बता रहे हैं। जो अनात्मस्तु अनाथ मनस्तु शत्रुत्व वर्तक आत्मेव, आत्मेव जो अनात्म वस्तु में आत्मेव वर्तते वर्तन करता है, चिंतन करता है, शत्रु वो अपने लिए शत्रु है। शत्रुत्व शत्रुवत, छे छे देखो पढ़ो, काटोगे भगवान को? जो अपने सिवाय दूसरों की इंद्रिया मन बुद्धि धन पर अधिकार जमाने की कोशिश करता है या अपना मानता है या उनकी आवश्यकता समझता है, वो अनात्म वस्तु को अपना मानता है। तो शत्रुवत अपने साथ व्यवहार, अपने साथ विश्वासघात है। बोलो किसने मतलब विश्वासघात किया? किसने? अपने आप ने खुद अपने आप को विश्वासघात, मैं सहज सुख राशि हूं और किसी को अपना मान। देखो याद रखो, हमारा नुकसान हमारी प्रॉपर्टी के जाने से या हमारे को टीबी या एड्स होने से नहीं होता, ध्यान दो। हमारा नुकसान हमारे बच्चे के मरने से या प्रॉपर्टी जाने से या कुछ होने से कुछ नहीं होता, हमारा नुकसान होता हमारे भाव बिगड़ने से। भाव सही है तो सब सही है, भाव बिगड़ा तो सब, इतने जन्मों की हमारी कमाई क्या है? हमारा भाव कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाई ना चाहिए कबू कछु तुम संग सहज स्नेह, उसे कुछ नहीं चाहिए, उसका सहज स्नेह है भगवान। जब तक आपको कुछ चाहिए तो भगवान चाहिए ही नहीं, यहीं पे जाना है, क्या करूं? तो हमारा नुकसान होता है हमारे भाव बिगड़ने से। जड़ के द्वारा चेतन को क्या तृप्ति मिलेगी? किसी कर्म के द्वारा मुझे कुछ नहीं मिल सकता, ये चिंतन करें, किसी कर्म के द्वारा कुछ नहीं मिल सकता। कैन सी 18:12 ऑल्सो, 18 एक ये भी देख लो, 18 ये देखो सेकेंड लाइन, कर्णम कर्म करते थी त्रिविधा कर्म संग्रह, ये कर्म संग्रह होता है, किसी भी करण को अपने लिए यूज करते हैं शरीर किसी को, तो उसे करण संग्रह होता है। अपने आप कर्ता मानते, अच्छा कर्ता मानते मैं कुछ खाता हूं, ये करण संग्रह है। मैं कर्ता नहीं हूं, मैं खा ही नहीं सकता, पत्नी का भोगता नहीं हूं, भोग नहीं सकता। जो मानता है कि भोग, आप मानते भी हो ना कि आप खाते हो या भोगते हो, तो कर्म संग्रह हो रहा है। यस्य न अहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वा अपि सा इमान लोकन न अंति न निबध्यते। यस्य न अहंकृतो भावो, जिसमें अहंकार का भाव नहीं होता, बुद्धिर यस्य न लिप्यते, उसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती। उसमें अहंकार का भाव नहीं होता, उसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती है। अहंकार मतलब मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पत्नी हूं, मैं मां हूं, ये अहंकार है। मैं तो सिर्फ यही चाहती हूं हमारे घर में सब अच्छा रहे, तो मां अहंकार की मूर्ति हो, हमारे घर में सब अच्छा रहे। यस्य न अहंकृतो भावो बुद्धिरस्य न लिप्यते, जिसमें अहंकार भाव नहीं होता, उसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती। हत्वा भी सा इमान लोकान ना हंति ना निबध्यते, वो किसी को मार देता है ना तो भी बंधन में नहीं बनता। जैसे अर्जुन, वो अर्जुन क्या बोल रहा है कि मैं सब छोड़कर सन्यासी होना चाहता हूं, भगवान कहते हैं तो करोड़ों को मार, करोड़ों को मारने के बाद भी ना निबध्यते। हंता हत्वा अपि स इमान लोकान ना हंती ना निबध्यते, ना किसी को वो मारता है क्योंकि मैंने मारा ही नहीं है, मैं तो यज्ञ किया। वो स्वाहा स्वाहा यज्ञ अर्जुन, ये वाला यज्ञ कर, जो काम भगवत प्रीत्यर्थ है वो यज्ञ, चाहे तीर चढ़ाओ, चाहे स्थल पे बैठो, चाहे माला करो या मंदिर में बैठो। अहंकार को हटाना पड़ेगा, ये भगवान हम नहीं बोल रहे, भगवान बोल रहे हैं ना अहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते। ये थिंग वेल हमें बड़ा अच्छा लगता है, वो भी बोल सकते। अनिष्टम इष्टम मिश्रम, ये श्लोक अगर हम नहीं समझोगे तो क्या लिखा है, अनिष्टम इष्टम मिश्रम, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम। ये तीन कर्म के फल होते हैं, अनिष्टम जो हम नहीं चाहते, इष्टम जो हम चाहते हैं, मिश्रम जो मिक्स होता है, ये बोलते हैं। किसके लिए होते हैं, भवत्य अत्यागिना प्रत्यो ना तू सन्यासी नाम क्वचित। इसका मतलब यह है तीन प्रकार के फल होते हैं, जो हमें अच्छे लगते हैं, अनिष्टम जो अच्छे नहीं लगते, और मिश्रम। ये किनको होते हैं, भवत्य अत्यागी नाम प्रत्य, ये सब अत्यागी व्यक्तियों को फल मिलते हैं, सन्यासियों के नहीं। मतलब जो फल इच्छा रखते हैं कि मेरे को ये मिल जाए इसी करके, उन सबको तीनों ये फल मिलते हैं। हम कोई भी कार्य करते हैं किसलिए करते हैं, हमें कुछ मिल जाए, कोई उद्देश्य ले करते हैं, उद्देश्य छोड़ दो, भगवत प्रीत्याग करो तो ही फल नहीं मिलेगा। अगर कामना के साथ करोगे, काम संकल्प वर्जिता होना होगा, ये समझने में बहुत समय लगेगा। अगर डूबोगे तो समझोगे, नहीं तो कुछ नहीं समझ आएगा। संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है किसको, भगवत पे अत्यागी नाम, कितना सुंदर शब्द बोला है भगवान ने। अत्यागी जो त्यागी नहीं है, मतलब त्यागी का मतलब ये नहीं है कुछ फिजिकली छोड़ना, मन से कि मेरे को कुछ चाहिए नहीं। तो तीन कर्म के फल मिलते हैं, अनिष्टम इष्टम मिश्रम, सन्यासी को नहीं मिलते। सन्यासी नहीं जो डंडे वाला है, सन्यासी मतलब भोग से सन्यास, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति के भोग से सन्यास। ये बड़ा अच्छा श्लोक है, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम् भवत्य अत्यागिनां प्रत्यनाति सन्यासिनां क्वचित्। ऐसे गीता पढ़नी चाहिए, हमने वो गीता पढ़ना आज बताया है कि कैसे पढ़ो संगम। अच्छा गीता का सर श्लोक वो मत पढ़ो, ट्रांसलेशन कर पढ़ श्लोक मैं डूबो।
हम हमेशा चिंतन करते रहते हैं, जिसमें हमारी ममता होती है, कामना होती है, आसक्ति होती है, हमें सदैव राधा रानी का चिंतन करना चाहिए। और एक श्लोक एक पंक्ति अपने आप में पर्याप्त है, हमारा पूरा दिन हफ्ते जीवन डूबे रहने के लिए। जैसे सुबह के समय राधा रानी जब कुंज गमन करके अपने शयनालय में होती हैं, तो
बिना किसी के देखे वह वापस आती हैं और बैठी होती हैं, उस समय उन्हें बहुत विरह अपनी सता रही होती है, बहुत सेपरेशन, बहुत दुख हो रहा होता है उनको, राधा रानी को श्री कृष्ण से, और राधा रानी रोती हैं, रोती ही रोती रहती है। राधा रानी के अश्रु प्रवाहित हो गए और अश्रु प्रवाह जो हो रहा है उसके साथ साथ में उनकी जो वाणी है, वाणी चौक हो रही है, निकल नहीं रही, वाणी नहीं निकल रही, अश्रु प्रवाह हो रहा है और बहुत दुख का अनुभव हो रहा है उन्हें। और उस चौकड वाणी में भी उनके तो यर्निंग जो है कृष्ण से मिलने की, वो साथ में हो रही है। चिंतन करें हम, कितना गंभीर चिंतन है ये, पूरा दिन रात डूबा रहेगा कि नहीं, फैक्ट्री में भी रहने चाहे खाना बनाए, मेरी राधा रानी रो रही है, उनकी आवाज नहीं निकल रही, और निकल रही है तो उसमें इतनी यर्निंग है, भगवान कृष्ण से मिलने की इतनी आकांक्षा है, वो रोती हुई चौकड आवाज में भी आ रही है। आप समझ रहे, इतना इतना विरह है, इतना क्रंदन है, और मिलन आकांक्षा भी बहुत तीव्र है, वो चौकड पानी से भी, मुख से भी सब, और आप साथ बैठ रहे हो, आप देख रहे हो, और ऐसी स्थिति में वो ललिता के साथ, ललिता को अपना हृदय खोल के बताने की कोशिश कर रही है, कैसी अवस्था में रो रही है, वाणी चौकड, वाणी एकदम चौकड है, बाहर नहीं आ रहा, और तीव्र आकांक्षा मिलन की है, और अश्रु प्रवाह हो रहा है, अत्यंत दुखी हैं, बैठी हैं, आप उनके चरण सम्मान कर रहे हो, धो रहे हो, साफ कर रहे हो अपने आंचल से, निजान चले, वृंदावन महिमामृत ने बताया है मंदिर, निजान चले चरण को पहुंचते भी हैं और आंचल से अपने हवा भी करते हैं, उसी आंचल से, सोचो चलते चलते अपने आंचल से ही हवा कर रहे हो, ये भी चिंतन कर सकते हो, निजान चले। और ललिता को अपनी व्यथा बता रही है कि तुमने तो कहा था श्री कृष्ण का संग करवाओगी और अमृत के सिंधों में मुझे डुबाओगी, तो ये बताओ कि घर से निकाल के फिर एकदम से घर वापस क्यों ले आई। मैं अमित को बोलूं कि अमित तुम ये वृंदा में लेके चलोगे, अभी बाहर करके वापस घर में क्यों छोड़ दिया, तो अमित की क्या हालत होगी, तो हम कैसे बोले। वैसे ही राधा रानी लक्ष्मण सखी को बोलती, तुमने तो बोला था अभी अमृत के सिंधु में मुझे निमज्ज करोगी, बाहर घर से निकाल के फिर ले आई अंदर, मैंने ऐसा क्या पाप किया है, क्या गलत कार्य किया है कि मुझे इस अमृत का सिंधु का आस्वादन नहीं हो पाया, ललिता बताओ। वो आप यहां बैठ, वहां बैठे हो, आवाज निकलेगी आपकी, ललिता सखी राधा रानी का क्रंदन, और आप अंदर से रो रहे हो कि राधा रानी रो रही, यही चिंतन करो दिन भर, भोजन बनाओ, कुछ भी करो, बच्चा रहेगा उसकी शक्ल देखो, शक्ल तो नहीं देखते, अंदर लीला देखते, शक्ल के ऊपर मेरी राधा रानी रो रही,